श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, श्री जगन्नाथ पुरी धाम की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज के इस जगन्नाथ कथा श्रृंखला के आखिरी सत्र में आपका स्वागत है। वैसे तो भगवान के किसी भी अवतार की जो कथा है वो अनंत है। कभी भी कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई पुस्तक, सारे भगवान के एक रूप की सारी लीलाओं को समाविष्ट नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी कितने भी ग्रंथ लिखेंगे, यहाँ तक कि व्यास देव ने भी इतने सारे ग्रंथ लिखे, फिर भी हरि की कथा जो है ना उसको समेट नहीं सकते। सृष्टि का निर्माण जब हुआ तभी अनंत शेष जो है वो अपने हजारों फनों से हरि का गुणगान कर रहे हैं, और कहते हैं अभी भी शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई उनकी, इतने साल बीत गए, क्योंकि हरि की कथा लीला अनंत है। अभी हम पंढरपुर जाएंगे, आज रात को 7 दिन वहाँ रहेंगे, उनकी भी लीला अनंत है। 2 दिन में 4 दिन में होना मुश्किल है, फिर भी प्रयास ये रहता है कि सभी लोगों को कुछ सार समझ में आ जाए, एसेंस समझ में आ जाए, उन पर अपना हृदय बसे, हमारे हृदय में वे बसे, उनकी स्मृति बनी रहे, उनके बारे में चर्चा बनी रहे, ये उसका उद्देश्य है। आप भी आज जब घर जाएंगे तो हम अपने मन में ये प्रश्न करना कि क्या मेरा मन लगा कथा में, क्या मेरे हृदय में जगन्नाथ जी बसे, क्या उनकी लीलाओं का मुझे स्मरण हो रहा है जो मैंने सुना। चिंतन करने योग्य और विचार करने योग्य मेरे हृदय में बस गए क्या उनकी कथाएं और वो स्वरूप, और क्या ये मेरा चिंतन मुझे जीवन भर लाभ देगा। इस सारे प्रश्नों का उत्तर आपको ही देना है अपने आप को। ये सब किस पर निर्भर है, कितनी आत्मीयता से आपने कथा सुनी है, इस पर यह सब निर्भर है। सारे उत्तर मिलेंगे आपको अगर आपने ये कथा आत्मीयता के साथ सुनी हो। विद द हार्ट यू हैव टू लिसन, भले उसका अंश हो या पूर्ण हो या अनंत हो या छोटी सी लीलाएं हों। एक चातक पक्षी जो वर्षा ऋतु में जब स्वाति नक्षत्र आता है, उसको अभी बांटने की जरूरत नहीं प्रभु जी कथा के बीच में। जो चातक पक्षी वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र जब आता है तो स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है उसी को जमीन पर पड़ने के पहले ही पी लेता है, और साल भर वो किसी भी तालाब का, नदी का बहता हुआ, जमा किया हुआ पानी नहीं पीता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह साल भर प्यासा रहता है, और वर्षा ऋतु का पानी भी आकाश में जब आता है तब नहीं पीता है। वर्षा ऋतु में जो स्वाति नक्षत्र में पानी आता है उसको कहते हैं स्वाति जल। हो सकता है कभी स्वाति नक्षत्र में वर्षा ही ना हो सकता है। वैसे अभी आज सुबह से वर्षा ही नहीं हो रही है, कल धुआंधार वर्षा हुई। तो स्वाति नक्षत्र में जब जल आता है आकाश से तो वो जमीन पर गिरने के पहले ऐसे ही चोंच खुली करके जो गिरेगा वही उसका जल पान है। तो कहते हैं कथा ऐसे सुननी चाहिए, वेरी स्पेसिफिक, आतुर होकर, व्याकुल होकर, तृष्णा से व्याप्त होकर, प्यासा होकर कथा सुननी चाहिए, तभी वो ग्रहण होती है। ये तो कथा कथा ही रहती है, कथाकार के पास रहती है, हमारे पास कुछ नहीं रहते हैं। इसलिए ये कान दिए हैं। और आप लोगों को बता दूं, मैं मेडिकल डॉक्टर के हिसाब से, कि सबसे आखिरी जो इंद्रिय अपना काम बंद कर देता है वो है श्रवण इंद्रिय, और बंद नहीं करता है वो आखिर तक। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक कर्ण जो है, श्रवण शक्ति, मैं कर्ण नहीं कहूँगा क्योंकि कर्ण जो है वो खराब हो सकता है, कर्ण के अंदर के औजार भी खराब हो सकते हैं, लेकिन श्रवण करने की शक्ति जो है वो जीवन के आखिरी क्षण तक बनी रहती है। इसका कारण क्या है? देखने की शक्ति समाप्त हो सकती है, स्वाद समाप्त हो सकता है, सूंघने का भी शक्ति समाप्त हो सकती है, स्पर्श भी समाप्त हो सकता है, लेकिन श्रवण समाप्त नहीं होता है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम आखिरी समय पर उनके नामों का श्रवण करें, कोई सुनाएगा तो हम सुने। यहाँ तक कि आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, गुड न्यूज़ है हमारे लिए। अगर हम कोमा में भी रहेंगे, बहुत गहरी बेहोशी में रहेंगे, फिर भी हम सुन सकते हैं। हम उसको प्रतिसाद नहीं दे सकते, हाँ 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 सुन रहा हूँ ऐसा नहीं कह सकते। वो यंत्र हमारा खराब हो रहेगा शायद, कोमा में वो यंत्र काम नहीं करेगा, प्रतिसाद देने की शक्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप बोलेंगे ना माता जी हरे कृष्णा, सुनो ध्यान से सुनो, तो माता जी सुनती है, हम सुन सकते हैं, प्रभु सुन सकते हैं। तो आखिरी क्षण तक हमें भगवान नाम, भगवान लीला, भगवत ध्वनि लहरी सुनने का अवसर मिले, इसलिए भगवान ने यह सुविधा बना के रखी। कितने दयालु है भगवान हमारे। सारा जीवन का सार जो है ना वो अंतिम क्षण में उनकी याद करना है, और याद तब होती है, याद तीसरी स्टेज है। पहली स्टेज श्रवण है, दूसरी स्टेज कीर्तन है, और श्रवण और कीर्तन जब परिपूर्ण होता है तब स्मरण होता है किसी का। कोई बात हम सुनते हैं तो आधी भूल जाते हैं, लेकिन कई बात सुनते हैं और दोहराते हैं, किसी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने सुना आज, तो वो पक्की हो जाती है। और जब सुनते हैं और दोहराते हैं तो उसका स्मरण भी पक्का हो जाता है। हमारी कथा का भी यही रहस्य है, जो जो सुना है वो त्वरित हम उसको दोहराते हैं, या तो घर में पत्नी को बता देते हैं या किसी को बता देते हैं, तुरंत पहले वाली कथा में बता देते हैं। उससे क्या होता है, वो कपड़े को कैसा होता है कलर फिक्सर, वैसे नॉलेज फिक्सर हो जाता है, वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है पूरा, फिर कहीं भी कभी भी बोल सकते हैं। और बीच में एक तत्व है उसके, लिखना। कितने भी बड़े पंडित होंगे हम, फिर भी लिखना छोड़ना नहीं चाहिए, ये एक नम्रता का प्रतीक है। आप सुनेंगे उसको लिखना चाहिए, ताकि जब भी आगे जाकर बोलने का मौका आएगा, यानी कीर्तन यानी बोलना प्रवचन करने का मौका आएगा, तो वो आपके पास से आप पढ़ा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हो और बता सकते हो। और जितनी परिपूर्णता होगी हमारे सुनने में और कहने में, उतनी हमारे स्मरण की परिपूर्णता होगी, और स्मरण परिपूर्ण होगा तो भगवान मृत्यु के बाद मिलने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके साथ हैं। स्मरण के माध्यम से भगवान हमारे साथ सदैव रहते हैं। जिस स्थान का हम स्मरण करेंगे, हम उस स्थान का वास करते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे उसके साथ हम रहते हैं, तो भगवान के बारे में सोचेंगे स्मरण करेंगे तो उन्हीं के साथ रहते हैं। और वो कैसे है भगवान, एक बार आपने उनको पकड़ लिया तो भी आपको पकड़ते हैं, लेकिन हम उनको पकड़ के छोड़ सकते हैं, एक बार उन्होंने पकड़ लिया तो वो छोड़ते नहीं हैं, हम ना चाहते हुए भी हमको पकड़े रखते हैं। आसानी से वो किसको पकड़ते नहीं हैं, लेकिन बार पकड़ लिया फिर छोड़ नहीं सकते। पुत्रा है कैसा, छोड़ 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 दे छोड़ दे छोड़ दे, नहीं छोड़ा उन्होंने। आपने एक बार पकड़ाया तो मैं क्यों छोड़ूं, भगवान ने नहीं छोड़ा, उद्धारी करके छोड़ दिया उसका, पूरा धात्री बना दिया, माता जैसे बना दिया, गोद खिलाने वाली। एनीवेज, तो आज हमारा विचार ऐसा है कि 2 घंटे का प्रवचन होगा, उसमें 1 घंटा हम रथ यात्रा के पूरे सिक्वेंस की संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो तो ये रथ यात्रा का कार्यक्रम जो है वो उसको पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, ये सारे पुराणों में उसका वर्णन आता है कि राजा इंद्रद्युम्न जब ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध के प्रथम सत्ययुग में सुरोचिस मनु के काल में जब राज्य कर रहे थे, तब भगवान प्रकट हुए द्वितीय परार्ध में, और तब से ये रथ यात्रा चल रही है। सबसे पहली रथ यात्रा महावेदी से रत्नवेदी तक हुई, यानी गुंडीचा से जगन्नाथ मंदिर में, जिसको हम बौड़ा यात्रा आज कहते हैं, उल्टी यात्रा, लेकिन वो पहली यात्रा थी जिसमें 3 रथ बनाकर भगवान को पहुंचाया गया, सुभद्रा जी के साथ सुदर्शन चक्र को और बाकी दोनों पर 2 भागिया, और वहाँ पर प्रस्थापित किया गया। फिर जगन्नाथ जी ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को बताया कि मुझे आपको हर साल इस तिथि को ले चलना है। तो पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, इन पुराणों में ये तिथि का वर्णन भी दिया है। हाँ, हो सकता है मैंने लिखा हो, आपको बताता हूँ। एक तिथि है माघ महीने की शुक्ल पंचमी, इसका अर्थ क्या होता है? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी ये शास्त्र के अनुसार रथ यात्रा करने के लिए उच्च तिथि है। दूसरी है चैत्र शुक्ल अष्टमी, यानी नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन। और तीसरा है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जिसमें पुष्य नक्षत्र हो। और भगवान ने स्वयं कहा है कि इन तीनों में से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पुष्य नक्षत्र के साथ बहुत सर्वश्रेष्ठ है। और उन्होंने ये भी बताया है, अगर कभी कभी क्या होता है कि उसी तिथि को पुष्य नक्षत्र नहीं आता है, आगे पीछे हो जाता है, तो उन्होंने कहा पुष्य नक्षत्र नहीं भी हो फिर भी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया मुझे बहुत पसंद है। इसलिए विश्व भर में जगन्नाथपुरी में भी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ यात्रा होती है। अलग अलग नाम है रथ यात्रा के, एक नाम है गुंडीचा यात्रा, उसका मैंने कल आपको बताया ना, अपनी मौसी माँ को मिलने के लिए हर साल एक बार जाते हैं, जो है गुंडीचा देवी, इसलिए उस यात्रा को गुंडीचा यात्रा कहते हैं। गुंडीचा देवी को मिलने जा रहे हैं, एक कारण है उनका जन्म स्थान को मिलने जा रहे हैं। एक नाम है पतित पावन महोत्सव, वो तो उसका अर्थ तो एकदम प्रकट है कि जो वर्ष भर उनको देख नहीं पाते, जाति पाति के कारण या किसी और कारण, देशी विदेशी होने के कारण, वो सभी लोगों को दर्शन देने के लिए मंदिर छोड़कर मूल मूर्ति भगवान का, मूल विग्रह बाहर आते हैं, इसलिए उसको कहा है पतित पावन महोत्सव। तीसरा कहा है घोष यात्रा। घोष का कारण, नाम क्या है, कारण क्या है, क्योंकि भगवान के रथ का नाम है नंदी घोष, भगवान के रथ का नाम है नंदी घोष, सुभद्रा के रथ का नाम है पद्मध्वज, और बलदेव जी के रथ का नाम है तालध्वज, ताल वृक्ष का उस पर चिन्ह है, और सुभद्रा देवी का पद्म यानी कमल का चिन्ह है, और इनका नाम है नंदी घोष। तो नंदी घोष यात्रा करते हैं ना बैठकर, नंदी घोष में बैठकर, इसलिए यात्रा को नंदी घोष यात्रा भी कहा गया है। चौथा है महावेदी महोत्सव, अभी उत्तर भी सेम सिंपल है उसका, महावेदी का दर्शन करने जा रहे हैं भगवान, 9 दिन महावेदी पर विराजमान होने वाले हैं, जैसे कि आज के दिन में, आज के तारीख में वो महावेदी पर बैठे हुए हैं। रथ यात्रा के दिन निकले तो कभी कभी उस दिन पहुंचते नहीं है, बीच में ही रुक जाते हैं, सूर्यास्त होने पर रथ यात्रा रुक जाती है, तो इस साल ऐसे ही हुआ, पिछले साल हम गए थे तो एक ही दिन में पहुंच गए थे, इस साल बीच में रुक गए तो दूसरे दिन 1 घंटा में पहुंच गए, तो वो दिन भी रात को, मतलब एक रात रास्ते में रहे, पहुंचने के बाद एक रात रथ में रहते हैं गुंडीचा के पास, और उस तीसरे दिन शाम को, जिस दिन आज पहुंच गए तो कल शाम को फिर गुंडीचा में प्रवेश करते हैं। ऐसा कहा गया है कि 10 साल अगर आप हर रोज जगन्नाथपुरी के मंदिर में नीलाचल पे जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, वो गुंडीचा मंदिर में एक दर्शन करने के बराबर है। ये सब पता होना जरूरी है, नहीं तो हमारा वहाँ का ट्रिप करेंगे सब ट्रिप बेकार जाएगा, हमको कुछ पता ही नहीं है, यहाँ वहाँ घूमेंगे जाएंगे, मतलब यहाँ भीड़े नहीं जाएंगे, वहाँ भीड़े नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि 10 साल हर रोज़ यानी 365 डेज रोज़ दर्शन करेंगे नीलाचल में जाके जगन्नाथ का, तो वो गुंडीचा मंदिर में एक दिन दर्शन करने के बराबर है। और उसमें भी ये कहा गया है कि सवेरे अगर आप दर्शन करेंगे गुंडीचा में तो उसका 1 लाभ है, लेकिन रात में करेंगे तो उसका और भी 1000 गुना लाभ है। क्यों? क्योंकि वो रात में रास रचाते हैं, वृंदावन में जा रहे हैं ना, वो वृंदावन गए हैं, वृंदावन के भाव से वहाँ गए हैं, सभी लोग गोपी भाव से वहाँ सेवा करते हैं, सब गोपियाँ ग्वाल बाल उनकी सेवा करते हैं, और फिर सब सेवा लेने के बाद बीच रात में क्या करते हैं, राज नृत्य करते हैं। तो जब कोई मनपसंद क्रिया भगवान करते हैं तो वो करते समय बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत आनंद है, बहुत आशीर्वाद देने के भाव में रहते हैं। जैसे आपका बर्थडे है, आप बड़े उस दिन उदार रहते हैं, सबको दान देते रहते हैं, कुछ ना कुछ सबको गिफ्ट देते रहते हैं, क्योंकि आप खुश है, आज मेरा जन्मदिन है। उसी तरह से भगवान का जब ये जन्म स्थान पे अपने ब्रजवासी भक्तों को मिलने जा रहे हैं तो बड़े खुश रहते हैं वो, और जब प्रिय क्रिया करते हैं भक्तों के साथ, लीला करते हैं, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो उस समय दर्शन करना बहुत सुंदर माना गया, और ये शक्य भी है ना हमारे लिए। एक ही प्रेयर सोते हैं ना वो बंद करके, 7 प्रेयर जगे रहते हैं रात को 12 बजे तक, सुबह 3 बजे उनकी मंगला होती है, तो 3 के बाद आप कभी भी जा सकते हो, ऐसा है। तीसरा है दक्षिणाभिमुखी यात्रा। ये उत्तर दिशा में जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं और गुंडीचा दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण अभिमुखी यात्रा। 7वां नाम है 9 दिन यात्रा, क्योंकि 9 दिन के लिए चलते हैं। 9वां दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां नाम है दशावतार यात्रा। कहते हैं एक साथ भगवान के सारे अवतार जगन्नाथ के रूप में चलते हैं, दशावतार यात्रा कहा गया। और आखिरी यात्रा कहा है आड़प यात्रा। आड़प ये उस स्थान का नाम है जहाँ पर जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था, आड़प मंडप कहते हैं उसको, जो आड़प मंडप यानी रत्न महावीधि, तो आड़प यात्रा कहते हैं, क्योंकि आड़प की ओर जा रहे हैं, आड़प में आके रहने वाले हैं, इसलिए आड़प यात्रा कहते हैं। तो हमारे गोपीकांत प्रभु जी ने उधर आके उस दिन में बहुत बहुत सुंदर सुंदर बहुत सुंदर बातें बताई, बहुत सुंदर। अभी हमारा मिलना जुलना बाकी है, और 2.5-2 घंटे की बातें लिखना है, सुनना है, लिखना है। मेरा ये अनुभव है कि कोई भी धाम है, वृंदावन है, बरसाना है, या उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, द्वारका में द्वारका धाम है, हम लोग बाहर से जाकर पढ़ पढ़ कर सुन सुन कर कभी भी उतना जान नहीं सकते हैं जितना वहाँ के लोकल लोग जानते हैं। कितने भी ग्रंथ पढ़ लिए हमने, यात्रा वाली किताबें पढ़ ली, 84 कोष की परिक्रमा वाली किताब पढ़ ली, फिर भी वहाँ के लोगों को और गुप्त स्थान पता होते हैं जिसमें भगवान की लीलाएं हुई है, और कुछ कुछ रिचुअल भी वहाँ पर करते रहते हैं। और ये तो पूरा अद्भुत ही अद्भुत है जगन्नाथ जी का। कैसे अद्भुत है? क्योंकि एक ही वो मांझाड़ा पांजी एक ग्रंथ है जो जगन्नाथ जी ने ही स्वयं राजा इंद्रदुम्न को समझाया था कि मेरी पूजा कैसे करनी है। और वो एक उधर एक बड़ा मंदिर है, छोटा सा, यानी जगन्नाथ के मंदिर से छोटा है लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है। उसके अंदर वो पूरा शास्त्र जो है भुर्ज पत्र पर लिख कर ऐसा रखा है, उसको चंदन वंदन लगा के कुंकुम लगा कर रखा है, और वो केवल चीफ पुजारी ही वहाँ पर जा सकता है पढ़ने के लिए, और कोई पढ़ नहीं सकता है। कुछ कुछ बातें वहाँ पर उस समय के चीफ पुजारी की आपकी पहचान थी तो कोई मिला तो कोई कोई बातें उसने रिवील की, तो वो हमारी किताबों में यहाँ वहाँ प्रकट हो गई। लेकिन वास्तव में जो भी कुछ लिखा है ना वो बताएंगे आपको ना आपको समझ में आएगा वो, क्योंकि वो कहते हैं ये सब गुप्त है, ये बता नहीं सकते हैं। कभी दया से कभी एक आध बात बता देंगे तो उनकी मर्जी है, जब वो बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, आपने उनको प्रसन्न किया तो कुछ बातें आपको प्रकट करेंगे, लेकिन वो पूरी बात कभी किसी को प्रकट नहीं करते। तो कैसा होता है ना, समझो अभी कोई बर्तन है उसमें नल लगा दिया आपने, और बर्तन से आपको पानी लेने का अधिकार नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो गिरेगा उसको पकड़ते अपना ग्लास लेके वो जो गिरेगा यहाँ वहाँ से उसको पकड़ते रहेंगे। कितना पकड़ेंगे, जितना बर्तन में उतना पकड़ेंगे क्या? नहीं, जो स्पिल हो रहा है उसका एक एक दो बूंद पकड़ेंगे, बस उतना ही लाभ होगा हमको। हमारी अवस्था यही है, अनंत भगवान की लीलाओं के माध्यम में से जो जो कुछ संतों के मुख से बाहर निकलता है, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम सागर से हृदय भरे हृदय जो प्रेम सागर है उसमें से जो कुछ बूंदे गिरी वो हरिनाम महामंत्र के द्वारा हमारे प्रस प्रकट हो गई। लेकिन कौन कह सकता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो प्रेम का सागर है वो सब कुछ जानता हूँ मैं, कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं कह सकता। तो हम परिपूर्ण ज्ञानी भी हो जाएंगे, साक्षात्कारी भी ज्ञानी हो जाएंगे, फिर भी हरि के विषय में ज्ञान जो है वो अनंत ही होता है। तो हमारा प्रयास है जो पता है उसकी चर्चा, बोधयंतम परस्परम कथयंतस्तु माम तुभ्यम, ये करते रहना चाहिए। जो जो पता है उतना विषय काफी है, उतना विषय पर्याप्त है चर्चा करने के लिए। इसलिए भगवान का विषय सुनना और उसके विषय में चर्चा करते रहना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग कई बार कथा में कहते हैं लेकिन उसको कोई अमल में लाता नहीं है। जब आपके जीवन में कष्ट होगा उस समय तुरंत आप भगवान की कथाओं को श्रवण करो, आपके सारे दुख मिट जाएंगे। आपको लगे ऐसे कैसे मुमकिन है, हम तो बीच कई बार कथा सुन के आते, प्रॉब्लम घर में चलते रहते। सब प्रॉब्लम मिट जाएगा अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि प्रॉब्लम रहेंगे, उनका दुष्परिणाम आप पर नहीं होगा, आप आनंद में रहेंगे। हमको क्या चाहिए? हमको दुनिया में दुख है तो हमको ज़्यादा परवाह नहीं है, वो दुख हमको लगना नहीं चाहिए, बस उसका परिणाम हम पर नहीं होना है। अब युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम आनंद में रह रहे हैं, कोई दुखी है यहाँ पर? कोई दुखी नहीं, ठीक है। थोड़ा पेपर का भाव बढ़ रहा है, थोड़ा किताबें बढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन जो यूक्रेन में लोगों की हालत है अभी, रशिया में जो युद्ध भूमि में हालत ख़राब है, वो हमारी तो नहीं है। तो युद्ध तो चल रहा है ना दुनिया में, दुख भरी घटना तो चल रही है, लेकिन हम सब दुख भरी घटना से प्रभावित नहीं है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो निजी जीवन में दुखी घटनाओं का प्रभाव हो रहा है, उस प्रभाव से मुक्त होकर हमें दुख रहित होना है तो हमको तुरंत भगवत कथा का आश्रय लेना चाहिए। वादा करो, संकल्प करो आप लोग, क्योंकि संकटों की कमी नहीं जीवन में, एक ढूंढो हजारे मिल जाते हैं। संकट तो कुछ कम नहीं है, दुख भरी घटनाएं कुछ कम नहीं है, हर समय हर क्षण हर दिन कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसको, नापसंद घटनाएं होती रहती। लेकिन जब नापसंद घटना होती है, दुखद घटना होती है, तब जो व्यक्ति तुरंत ही भगवान का नाम लेता है और भगवान की कथा सुनने के लिए योजना बनाता है या किताब खोलकर भगवान की लीला पढ़ने लगता है, उसके जीवन में तत्काल सारे दुखों का नाश हो जाता है। ये हम सबको पता होना जरूरी है, केवल थियोरेटिकली नहीं, कथा में सुने हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं, उसको अमल में उतारना है, अमल करना है उसके ऊपर। और छोटी मोटी कोई भी कथा हो, साधन हमेशा हाथ के पास में रखो, ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब आपको ज़रूरत है तब आप अपना स्पीकर ढूंढ रहे हैं, कोई किताब ढूंढ रहे हैं और कोई भागवतम ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा तत्पर मिलना चाहिए हमको। जैसे भोजन बनाना है तो तुरंत, जब तड़का लगाना है तो तेल राई मोरी कड़ी पत्ता हींग सब एक साथ में मिलना चाहिए। अरे वो हींग कहाँ गया, तब तक तो वो तड़का जल जाएगा। उसी प्रकार से सारे साधन जो है, हरि नाम, हरि ग्रंथ, हरि कथा, ये सब तुरंत अवेलेबल होने चाहिए। तब जाकर हमारा जीवन जो है वो सदैव दुख से मुक्त रहेगा, सदैव आनंद से भरा रहेगा। और हम सब लोग इस विश्व में जीते हुए प्रयास कर रहे हैं कि हम आनंदी रहें, कोई प्रयास नहीं करता कि मैं दुखी हो जाऊं। लेकिन सब दुखी होते रहते हैं और आनंद का मार्ग केवल सुनते हैं, उसको अपनाते नहीं है। तो आइए हम संकल्प करें। तो ये बात शुरू होती है जब भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को इंद्रदुम्न राजा ब्रह्मा के द्वारा, भारद्वाज मुनि के द्वारा उनको प्रतिष्ठापित करते हैं। तो ये कथा तब से आ रही है, तब से शुरू हुई है। कभी हुआ था ये, हमने कहा था ना कल, वैशाख शुक्ल अष्टमी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में ठाकुर जी हमारे प्रकट हुए थे। उसके वैशाख महीना का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वैशाख महीना? गर्मी। हमारे घर में साउथ इंडिया में कोंकणी भाषा में गर्मी नहीं बोलते हैं, वैशाख ही बोलते हैं। इसका अर्थ ही है कि वैशाख में जो गर्मी होती है वो कभी बाकी महीने में इतनी नहीं होती, चैत्र में इतनी नहीं होती और ज्येष्ठ में भी नहीं होती। वैशाख ही कड़क, मतलब मई महीना, कड़क उनाड़ा, कड़क धूप का समय है वो। सो भगवान को गर्मी होने लगी, तो भगवान ने इंद्रदुम्न से कहा मुझे बहुत गर्मी हो रही है, आप मुझे कुछ करो। तो जगन्नाथ जी के लिए सारे कितने 119 से टाइप के सेवक हैं उनके, कई जगह मैंने सुना है सैकड़ों प्रकार के और भी ज़्यादा हैं। तो सारे सेवकों के टाइप्स में जितने जितने प्रकार के हैं उसमें जगन्नाथ जी के राजा जो हैं, हाँ वो प्रमुख हैं, सबसे प्रधान सेवक हैं। तो सबको बुलाकर मीटिंग करते हैं, बोले क्या करना चाहिए। बोले नरेंद्र पोखरी यानी नरेंद्र सरोवर जो है आज के तारीख में, उसमें भगवान को ना नौका विहार करेंगे, रोज जाकर ठंडे जल में उनको बोट से घुमाएंगे। तो ये नरेंद्र सरोवर की जो है वो 21 दिन की लीला होती है। वो कभी शास्त्र में लिखा भी है कि वो वसंत पंचमी के बाद में आरंभ होती है, नहीं अक्षय तृतीया के बाद भी आरंभ होती, अक्षय तृतीया वैशाख शुद्ध तृतीया, लेकिन मई महीने में होती है। तो 21 दिन भगवान को रोज बड़े जुलूस से निकालते हैं, उनकी उत्सव मूर्ति, मदन मोहन जी उनकी उत्सव मूर्ति है, नरसिंहदेव उनकी उत्सव मूर्ति है, 5 प्रकार की उत्सव मूर्तियाँ हैं, फिर यमेश्वर महादेव, फिर उनकी लक्ष्मी देवी, बहुत सारे लोगों को 5 शिव और 7 देवताएं जाकर साथ में पालकी में जाते हैं, कम से कम 12 पालकियाँ निकलते हैं। सबसे आगे जगन्नाथ जी मदन मोहन जी के उत्सव मूर्ति में रहते हैं, और फिर उनका जल के बीच में एक मंदिर है, उसमें पूजा होती है, फिर उसके बाद वो नौका विहार करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु थे तो नौका विहार के समय वहाँ पहुँच गए थे, तो महाप्रभु चैतन्य ने भी बहुत धूमधाम से जल में विहार किया उस समय में सारे भक्तों को लेकर। बहुत सुंदर लीला है नरेंद्र सरोवर की। 21 दिन जल में विहार करने के बाद भी हमारे भगवान को ठंडक नहीं मिली, वो इंद्रदुम्न राजा को कहते हैं कि अभी भी गर्मी बहुत है, कुछ करो। तो ये जो 21 दिन होते हैं उसको कहते हैं बाहरी चंदन यात्रा, बाहर बाह्य तरीके से। फिर अगले 21 दिन मीटिंग होती है, तय करते हैं कि भितोरी चंदन यात्रा करेंगे। तो उस भितोरी चंदन यात्रा में क्या होता है कि भगवान को एकांत में रखते हैं, और उधर एक रोहिणी कुंड के पास में एक नरसिंह मंदिर है, आप पता नहीं कितने लोग गए होंगे, बहुत भव्य नरसिंह मंदिर है। तो हमारे जो मुख्य पांडा है, हमारा मित्र है, उनके भाई आजन्म उनकी सेवा कर रहे हैं जगन्नाथ नरसिंह भगवान के। वो नरसिंह भगवान का जो मंदिर है उसके ठीक पीछे एक घुटवारी मंदिर है, घटुवारी मंदिर, वहाँ पर वो चंदन पीसते हैं, इसे बड़े बड़े लकड़ी देख लेकर ऐसे पूरे दोनों हाथ से घिसते हैं, पूरा दिन भर घिसते रहते हैं, और बहुत प्रचंड सुगंध वहाँ पर फैली रहती है। कहते हैं मिनिमम 2.5 किलो और मैक्सिमम 15 किलो चंदन की पेस्ट भगवान को लगाते हैं रोज, वो दिन भर वो कार्यक्रम करते चलते रहता है। और वो सेवा भी एक ही परिवार के पास में है, वही परिवार उसको सेवा करते हैं। जो भी हम बताते जाएंगे ना, तो हर एक सेवा का एक एक परिवार है वहाँ पर, पीढ़ी जात जन्म जन्मांतर से वही परिवार के लोग हैं, उन्हें सेवा करते रहते हैं। कभी कभी ऐसी भी लीला हुई है कि भगवान और राजा के इच्छा से या मीटिंग से एक नई जाति भी उत्पन्न हो गई है, वो भी बताऊंगा टाइम समय मिलेगा तो। भगवान को जिसको सेवा में लेना है वो उसको अपनी सेवा में एक नई जाति बनाकर इंक्लूड कर लेते तो 21 दिन तक ये चलता है। उम्मीद क्या है कि भगवान भी ठंडे हो गए रहेंगे, लेकिन भगवान कह रहे अभी भी ठंडे नहीं हूँ, अभी भी गर्मी का अनुभव हो रहा है। फिर क्या करें, भगवान को पूछते हैं, 42 दिन का सेवा किया और क्या करें। तो भगवान कहते हैं मुझे नहला दो, एक दिन पूरा नहला दो। तो उनके नहलाने के लिए इंद्रदुम्न राजा ने शीतला देवी के सहायता से एक कुआं खोदा था। आज भी वो कुआं जगन्नाथ मंदिर में पूर्व दिशा में है, शीतला देवी का मंदिर उसके सामने है। शीतला देवी साल भर उस कुएं का देखभाल करते हैं, उसको ढक के रखते हैं, उसका नाम है चुना कुआं, गोल्डन वेल। तो वो चुना कुआं साल भर उसका उपयोग नहीं करते, लेकिन जब ये स्नान यात्रा का समय आता है तो शीतला देवी के नेतृत्व में उसको खोला जाता है। फिर उस जल को बड़े विधि पूर्वक पवित्र किया जाता है, और उसके 108 कलश जो हैं वो कलश से उनका स्नान किया जाता है। कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको, धीरे धीरे बताता हूँ। उसमें से 35 कलश जो है वो जगन्नाथ के ऊपर सींचते हैं, 33 कलश जो है वो बलदेव जी के ऊपर उसका अभिषेक होता है, 22 कलश सुभद्रा देवी पर अर्पण करते हैं, और 18 कलश सुदर्शन चक्र पर अर्पण करते हैं, मिलकर ये 108 कलश होते हैं। फिर ये स्नान यात्रा कब होती है, अभी आषाढ़ महीना था तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान यात्रा होती है। और अद्भुत बात यह है कि खोल के रखो उसको, थैंक यू। ज्येष्ठ पूर्णिमा ये तिथि भगवान को इतनी पसंद है कि पूरे ब्रज में, पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्राचीन मंदिर है उस दिन भगवान की स्नान यात्रा होती है सभी जगह पर। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया ये तिथि जो है इतनी भगवान को प्रिय है कि राधा रमन जी, नंदगांव के कृष्ण बलराम जी और बरसाने की राधा रानी और लाडली लाल जी और जितने भी भगवान हैं द्वारका में और वृंदावन में, राधा दामोदर जी और राधा मदन मोहन, सभी लोग उस दिन रथ पे सवार हो जाते, सबके फोटो आए, किसी के चांदी के घोड़े, किसी के पीतल के घोड़े, किसी के लाल घोड़े, किसी के हरे घोड़े हैं, लेकिन सब ठाकुर जी उसमें रथ यात्रा करते। ऐसे ही ठाकुर जी की महिमा है। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, अभी 42 दिन हो चुके हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जिस दिन जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ था, बर्थडे, जिस दिन वो प्रकट हुए थे स्थान वेदी पर और महावेदी पर, उसी दिन उनको अपने मंदिर से बाहर लाया जाता है पंडी विजय करके। आज भी वो जगह जगन्नाथ जी के मंदिर, आप सिंह द्वार में जाएंगे ना, अगर मंदिर के सामने खड़े हैं तो उसके आपके दाहिने साइड में वो मंडप बनता है, स्नान मंडप, और मंदिर से बाहर आएंगे तो मंदिर के लेफ्ट साइड में, बहुत ऊंचाई में रहता है। और दिन भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये 108 कलश जो है इस प्रमाण से उनके ऊपर डाले जाते हैं। जैसे ही ये घटना होती है तो भगवान को ठंड लगती है और बीमार पड़ जाते हैं। अभी आपको लगेगा क्या बच्चों की कहानी बता रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सुना सकते हैं आप, बच्चे भी हाँ हाँ कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर सीताराम अलवा, वो जहाँ भी जाते हैं वो पुजारियों से उनकी तुरंत दोस्ती हो जाती है, पता नहीं कुछ क्या सिद्धि है उनको, प्रमुख पुजारी उनके एकदम मित्र हो जाते हैं और उनको अंदर से अंदर तक प्रवेश देने का कार्यक्रम होता है। बद्रीनाथ जाओ, द्वारका जाओ, कहीं भी जाओ, साउथ इंडिया में कहीं भी जाओ, किसी भी मंदिर में प्रवेश, तिरुपति जाओ, श्रीरंगम में जाओ, सब जगह उनका ऐसी पहचान है कि वो सीधे मंदिर के गर्भगृह में खड़े मिलेंगे आपको। केवल जहाँ पुजारी प्रवेश करता है वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके एकदम मैक्सिमम गेट तक वहाँ जाएंगे, बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। ये हमारे पंडरपुर के भगवान कितना, 3 सेकंड दर्शन देते हैं सबको। आप 48 आवर्स लाइन लगाएंगे ना, फिर भी 3 सेकंड में धक्का मार के निकाल देंगे, आप क्या देखेंगे, पैर देखेंगे, मुंह देखेंगे, क्या देखेंगे उनका आप। और ये हर साल ऐसा ही है, मुख दर्शन करने के लिए भी 1 घंटा लाइन लगाना पड़ता है, दूर से मुख का दर्शन होता है, लेकिन ये हमारे डॉक्टर साहब 4-4 घंटे एक जगह खड़े रहते हैं विट्ठल जी को निहारते हुए। कोई बंधन नहीं, कोई पुलिस टोकता नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, इतना उनका प्रस्त है। तो वो पहुंच गए अनवसर काल में जगन्नाथपुरी में, उसी साल हमारी यात्रा भी चल रही थी जगन्नाथपुरी की, गुरु महाराज भी हमारे समुद्र किनारे बिरला गेस्ट हाउस में रह रहे थे, हम भी आसपास में रह रहे थे, वो भी वहाँ रह रहे थे। तो पहुंच गए वो अनवसर काल, मतलब क्या, भगवान का मंदिर बंद, भगवान बीमार, उनको बुखार आ रहा है, तो दर्शन बंद, किसी को दर्शन नहीं होता है। तो ये पहुंच गए, पुजारी ने कहा आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ हमारी जरा जगन्नाथ जी को देखो, बीमार हो गए। उनका नियम भी है, हर 2-3 दिन के बाद में अलग अलग वैद्य को बुलाते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं कि ड्रामा नहीं कर रहे हैं, प्रेम से उनको श्रद्धा है पूरी कि ठाकुर जी बीमार है, और वो सोच समझ के दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, वही उनको भोग लगता है, काढ़ा कषाय दवाई जड़ी बूटी का। तो बोले आ जाओ आ जाओ, तो उनको ले गए, तो इनको लग रहा था हाँ क्या है वो जगन्नाथ जी को बुखार है, ऐसे मुझे बुला रहे हैं। हाथ लगाया ना, चटका लगा उनको, किसी उष्ण वस्तु को हाथ लगाया होगा, गर्म तवे को हाथ लगाया आपने तो कैसा लगेगा आपको। उन्होंने सब पुजारी ने हाथ पकड़ के उनके जगन्नाथ को स्पर्श कराया, इतना बड़ा चटका लगा कि ऐसे जंप हो गए वो, और वो अनुभव करके कि अभी जगन्नाथ को वास्तव में बुखार आता है, ऐसा नहीं कि वो कथा है, ऐसा नहीं कि स्टोरी है, लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है, दिस इज रियलिटी। तो वो इतने एक्साइट हो गए ना, इतने भाव विभोर हो गए कि वहां से जो भागे, रात का 1:30 बजे का समय था ये, 1:30 AM इन द मॉर्निंग, रात को 1:30 बजे वो मंदिर के जगन्नाथपुरी के गर्भगृह से जो भागे, वो सीधे भाग के समुद्र किनारे तक गए, बहुत दूर है वहाँ से कम 3-4 किलोमीटर है, इतने आवेश में थे रात के, वो भागते भागते बिरला गेस्ट हाउस में गए, वहाँ पर जाके राधानाथ महाराज जी के रूम में जाके खटखटाया, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, महाराज जी उठो। बोले बीच में क्या हो रहा है। महाराज जी उठ के दरवाजा खोला, महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी जगन्नाथ जी को हकीकत में बुखार है, ही हैज गॉट फीवर, रियली महाराज हैज गॉट फीवर, दिस इज माई हैंड, ये मेरे हाथ से मैंने उनको स्पर्श किया था, इसी को चटका लगा था, देखो अभी भी गर्म होगा। फिर वो एकदम, देखो कैसा है ना, ठाकुर जी के बारे में बहुत आप बातें सुनते हैं, सुनना और उसका अनुभव होना साक्षात्कार होना, हृदय में अनुभूति होना बहुत लंबा अंतर है उसके अंदर। और किसी को वो सुना हुआ है, उसके अनुभूति हो गए, उसके जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। तो ये व्यक्ति एक्साइटेड रहे, हर रोज जाके देख रहे हैं, हर रोज उनको गर्म लग रहा है। 12 दिन के बाद में अभी पुजारी ने कहा कि अभी बुखार खत्म हो गया, अभी देखो आप ला तो जा वहीं जाके हाथ लगाया, ठंडा है, कुछ है नहीं। तो हमारे और आपके लिए जो कथा है, स्टोरी है, कहानी है, वो वहाँ पे वास्तविकता है, रियलिटी। वो सारे जगन्नाथपुरी के जितने हजारों पंडा हैं, जितने जगन्नाथपुरी के निवासी हैं, वो ये सत्य रोज जीते हैं। दे लिव द रियलिटी एवरी डे। फॉर देम इट इज़ नॉट अ स्टोरी, ये कथा नहीं है उनके लिए, ये सच्चाई है, हकीकत है। जैसे जो हिमालय के वो क्या कहते हैं उसको, एवरेस्ट पर चढ़कर वहाँ का जाके अनुभव करके आया है, तो हमने भी बहुत सारी फिल्म देखी होगी, एवरेस्ट आरोहण, और बहुत सारा किताब पढ़ा होगा वहाँ क्या होता है, बर्फ होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन जो वहाँ जाकर आया है, झंडा गाड़ कर आया है, उसका जो अनुभूति है वो किसी भी थियोरी से श्रेष्ठ है। तो अभी जगन्नाथ जी को बुखार आया, तो उस उनका जो कमरा बनाते उस समय पे, दर्शन बंद हो जाता है, और उस कमरे को क्या बोलते हैं, हाँ, अणसर पिंडी, अणसर पिंडी ये उसका नाम है, अणसर पिंडी। अणसर का एक अणसर, ये उड़िया भाषा का वर्ड है, और अणसर मतलब अनवसर काल, जैसे उसको अणसर कहते हैं उड़िया में, हम लोग उसको अनवसर काल संस्कृत में कहते हैं। तो अणसर पिंडी यानी लकड़ी के बांस से बना हुआ बड़ा लंबा चौड़ा कमरा होता है। उसमें इतना बढ़िया बनाते कमरा कि वो जहाँ पर जगन्नाथ जी बैठते हैं, महावेदी पर, रत्न वेदी पर, वहाँ पर नहीं बैठते वो, उनको दूसरे कमरे में अंदर ही शिफ्ट किया जाता है, और वो पूरा डार्क रखते हैं उनको, कंप्लीट अंधेरा। एक दीपक कोने में जलता है, और एक जगन्नाथ के रत्न भंडार से एक हीरा लेके आते हैं, और वो हीरा उनके सर के ऊपर रखते हैं, उसका ही प्रकाश सब जगह फैलते रहता है, और कोई लाइट नहीं है। क्योंकि बीमार व्यक्ति को हमेशा शांत और अंधारी जगह पर रहना चाहिए ताकि वो जल्दी हील हो जाए। बहुत प्रकाश वाली जगह पर रहेगा, बहुत आवाज़ वाली जगह पर रहेगा तो उसका हीलिंग नहीं होता है। इसलिए मछली मार्केट के पास में अस्पताल नहीं बनाते, कारण क्या उसका मछली मार्केट का मतलब चाव 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 चलते रहता है वहाँ पर, वो भीड़ भाड़ में और शोर शरगुल में कभी भी बीमार आदमी ठीक नहीं हो सकता है। तो पूरा 15 दिन जो है वो पुजारी लोग अंधेरे में काम करते हैं, केवल लोग दीपक के ऊपर जगन्नाथ जी की सेवा करते रहते हैं। और देखिए क्या क्या करते हैं, पंडा जो है अपना नाखून और बाल उतार देते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर बीमार हैं तो एक दुखौटा सब जगह पर फैल जाता है। इस लाइक सूतक कैसे होता है ना, सब लोग दुखी होते हैं, काला पट्टी लगाते हैं या कुछ कपड़े नहीं पहनते हैं, मीठा नहीं खाते हैं, सिंपल खाते हैं, और घर में खाना भी कभी बनता नहीं किसी के मृतक के बाद में, बाहर से खाना आता है वो भी सिंपल खाते हैं, पेज खाते हैं, चावल की गंजी खाते हैं। उस तरह से सारे पांडा लोग शोक मनाते हैं कि हमारे ठाकुर जी बीमार हैं, क्योंकि उनके जीवन का आनंद का स्रोत जो है वो ठाकुर जी है, और जीवन का आनंद का उगम स्रोत जो है वो अगर दुखी है, बीमार है, पीड़ा में है, कष्ट में है, तो उनके भक्त लोग कैसे आनंद बना सकते हैं, तो भी दुख बनाते हैं। एक ही वस्त्र पहनते हैं, खाली काटी वस्त्र बस, और कुछ वस्त्र नहीं पहनते हैं। सारे जितने पंडा है सब लोग सर मुंडवा लेते हैं और वो सूतक बनाते हैं। कोई पवित्र कार्य नहीं करते, किसी का नामकरण विधि, किसी का जन्म विधि, जो भी कुछ होता है ना, हमारे शादी होती है, सगाई होती है, घर में प्रवेश होता है, खरीदारी करना, ये कुछ भी काम नहीं करते। और किसी का घर में भेंट भी देते नहीं है, कोई पंडा किसी के घर पे नहीं जाएगा, वो दो पंडा आपके घर पे नहीं आएगा, ऐसे शांत रहते हैं। और ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे किससे, कोई चर्चा गप्पा अलड़ नहीं करेंगे, सब लोग गंभीरता से अपनी अपनी सेवा में जाएंगे, चुपचाप सेवा करेंगे, वापस लौट के आएंगे, दुखी रहेंगे और बात भी नहीं करेंगे। और सारे पंडा लोग 15 दिन उपवास करेंगे, केवल कुछ कुछ फल खाएंगे, राजा भी उपवास करता है 15 दिन। ये भाव है धाम का। देखिए धाम में हम लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद पाते हैं, होटल में रहते हैं, रूम में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, दर्शन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, स्थानों में जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जब तक उस धाम में जो भाव है उस भाव को ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक आपकी उस धाम की यात्रा सफल नहीं होती। इसलिए जब वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन का भाव ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक कि वृंदावन में बरसाने जाएंगे तो बरसाने का विशिष्ट भाव ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, नंदगांव का विशिष्ट भाव ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। वृंदावन का अलग भाव है, काम्यमन का अलग भाव है, एक ही धाम में अलग अलग भाव है, एक पूरा स्थाई भाव है एक धाम का। द्वारका में अलग भाव है, जगन्नाथपुरी में अलग भाव है, श्रीरंग में अलग भाव है। श्रीरंग में क्या कर रहे भगवान? साउथ इंडिया में सो रहे हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन कर रहे हैं, द्वारका में राजनीति को अपना रहे हैं, और ऊपर क्या कर रहे हैं? बद्री केदार में तप कर रहे हैं, तपस्या नर नारायण ऋषि के रूप में। और वृंदावन में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, कुछ नहीं, आनंद ले रहे हैं। यहां तक कि देवताओं को भी उस समय दर्शन करने के लिए एक प्रहर का समय जो मिलता है ना 3 घंटे का, वो भी बंद है। उस 15 दिन में देवता को भी प्रवेश नहीं है, इतने भगवान बीमार हैं। तो फिर वो डायटिशियन आते हैं, वैद्य आते हैं, भगवान को एक्चुअल तपासते हैं, उनका चिकित्सा करते हैं। और 1 to 5 days, हाँ, कितने चिकित्सक बैठे यहाँ पर? बहुत सारे चिकित्सक बैठे हैं, लिख के रखो ये प्रोग्राम भगवान का। हाँ, 1 to 5 days के लिए उनको क्या करते हैं? उनको विशिष्ट भोजन का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। उसमें क्या है? केवल 5 टाइप के फ्रूट्स हैं और 3 टाइप के लिक्विड हैं, कषाय, काढ़ा, और कोई भी पकवान नहीं है, कोई पका हुआ अन्न नहीं है उनके लिए। नो कुक्ड फूड, नो 56 भोगा। वैसे लक्ष्मी देव का किचन बंद ही है उस दिन, केवल यही बन रहे हैं, जड़ी बूटी का कषाय, काढ़ा और 5 प्रकार के बताए हुए फल, उतना ही देना है। तो ये 5 दिन चलता है। फिर 6ठे दिन फिर बुखार नहीं उतर रहे हैं, क्या करें? और वैद्यों को लेकर आते हैं, और वो वैद्य जो है वो फुलूरी तेल का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। वो कैसे बनाते हैं? वो तिल तेल में बनता है, उसका फाउंडेशन तिल तेल का होता है, और उसमें 4 टाइप के फ्लावर और 20 टाइप के जड़ी बूटी होती है। तो इन्होंने बहुत कोशिश किया वो पंडाओं को पूछने के लिए, क्या है? बोले नहीं, ये गुप्त है ना, वो सब कैसे बताएंगे आपको? एक आध दो का नाम बताया, बाकी छोड़ दिया, बाकी सब जब गुप्त गुप्त करके छोड़ दिया। नहीं, ये गुप्त सेवा है हमारी, ये हम किसी सबको बता नहीं सकते। उनके परिवार में हमको जन्म लेना होगा ये समझने के लिए, ब्रजवासियों का भाव क्या है समझने के लिए, ब्रजवासी के घर में जन्म लेना पड़ेगा। गरीब, कुरूप, गंवार होकर एक जन्म लेना पड़ेगा, जिसके हृदय में ठोस ठोस के कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है। उनके मन में जो बातें हैं, वो जो उनके रिवाज रीति है, वो तब हम समझेंगे, तब तक नहीं समझेंगे। बाहर से कितना भी स्टडी करो, रिसर्च करो, नहीं समझ में आएगा। तेते पाइजे जाति से। तो फिर 6ठे, 7ठे और 8ठे दिन ये जो फुलूरी तेल है, इसका भी बनाने का प्रक्रिया होता है। ये 1 साल पहले से बनाते हैं उसको, और 1 साल पहले बन के ये ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं उसको। बीच बीच में भी निकालते हैं प्रक्रिया करने के लिए, लेकिन 1 साल ज़मीन के अंदर रहता है। उसके बाद में ये जो 6ठा दिन है अनवसर का, उस दिन उसको निकाल कर मंदिर भेज देते हैं 3 दिन के लिए। और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी एक ही परिवार का लोग जो है इसको बनाते रहते हैं, वही इसका काम करते रहते हैं साल भर उनका ये, बाकी सब करते होंगे अपना काम, लेकिन उनका मेन सेवा जीवन का उद्देश्य ये है कि ये फुलूरी तिल बनाना है उनको। तो मैंने मेरे प्रमुख पुजारी मित्र से सुना है कि जब ये फुलूरी तेल का अभिषेक होता है ना, तो वो भी पूरा भीग जाते हैं, उसके भगवान पर अभिषेक कर रहे हैं तो वो भी पूरा भीग जाते हैं। कहते हैं 7 दिन तक हम लोग कस के भी गर्म पानी से नहाएंगे तो भी हमारे शरीर से उसकी सुगंध निकलती नहीं है। और अति मुझे भी कभी कभी मिलता है महाप्रसाद उसका, समय पे जाएंगे तो पूरी बोतल मिलेगी, और लेट जाएंगे तो छोटी सी बोतल मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ये सारा जो है ना, भगवान ने अपने जीवन का सारी रहस्यमय मूल्यवान जितनी भी बातें हैं वो सब अपने भक्तों के जिम्मे करके रखी है, उनका अधिकार है पूरा, वो उनके पास में रखा है। जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, जो नहीं चाहे उसको नहीं देंगे, जो प्रसन्न कर रहे हैं उनको दे देंगे। तो ये अभिषेक 3 दिन होता है, और फिर उनका बुखार जो है वो उतर जाता है। तो बुखार उतरने के बाद में जगन्नाथ जी कहते हैं मुझे पेट में दर्द हो रहा है, कभी पर ठीक नहीं हुए, पेट में दर्द हो रहा है। तो और एक वैद्य को बुलाते हैं। फिर 9वें और 10वें दिन वैद्य जी उनको डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा, सुन रहे हैं क्या, दशमूल मोदक खिलाते हैं। दशमूल मोदक, 10 औषधियाँ होती है उसके, उसका एक मोदक बनाकर भगवान को रोज खिलाते हैं। 9वें और 10वें दिन, फिर 11वें दिन भगवान पूरे ठीक हो जाते हैं। अभी ये 11 दिन तक जो भी उनको फल दिए हैं, उनका छिलका या फल का वेस्ट बी जो भी कुछ है, और या जड़ी बूटी का कोई छिलका वलका है, वो सब कोई भी फेंकते नहीं है, वो सब उसको जमा करके रखते हैं। और वो जो प्रसाद है उसको भी जमा करके रखते हैं, जो भगवान को काढ़ा दिया है, कषाय दिया है। तो ये सारा चीज़ 11वें दिन जो है ना इकट्ठा करते हैं, पूरा बड़े गुप्त रूप में इकट्ठा करते हैं, बग्गी में डालते हैं और पूरा जुलूस निकाल कर राजा के घर पहुँचते हैं। राजा भी उपवास कर रहे हैं, वो भी परेशान है, वो भी एक के बाद एक वैद्य को बुला बुला के किसी किसी जगह से बुला के भेज रहा है, और ट्रीटमेंट चल रही है बड़े प्रेम से। तो 11वें दिन जब ये पहुँचते हैं ना, तो उसको कहते हैं क्या नाम है उसका, राज महाप्रसादी कहते हैं उसको, क्योंकि राजा का इसमें अधिकार है। सारे पंडा उसको इकट्ठा कर राजा के पहुंचाते हैं महाप्रसाद। फिर राजा जो है ना सारे पंडाओं को थोड़ा 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 उसको बांट देता है, और कहते हैं राज महाप्रसादी, उसमें दशमूल मोदक भी रहता है, सब कुछ रहता है, एवरीथिंग इज देयर। कोई बीमार व्यक्ति को ये मिला ना तो उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। ये महाऔषधि है, महाऔषधि प्रसाद है, राज महाप्रसादी। हाँ, 12वें दिन राजा उसको बांटता है उसको, और फिर उसके बाद में जो बैठे बैठे बोर हो गए भगवान एक कमरे में अंधेरे में, उनको फिर वो कहते हैं कि जाना है, फिर घूमने जाना है मुझे। तो फिर वो उनका डेकोरेशन करते हैं। विकास आप बीमार हो गए थे, क्या है, दाढ़ी बढ़ जाती है, बाल बिखर जाते हैं इधर उधर, कपड़े भी ऐसे क्रम्पल रहते हैं। तो फिर अभी क्या लगता है, चलो दाढ़ी बनाओ, बाल बनाओ, मेकअप करो, अच्छे तरह से कपड़े नए लेके आओ, घूमने जाना है, रथ तैयार करो, ऐसे सब ऑर्डर हो जाती है। फिर वो सब तैयारी हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन इनका रथ बनना शुरू होता है, और अक्षय तृतीया से लेकर आषाढ़ द्वितीया तक रथ पूरा हो जाता है। उसके लिए 66,000 फंसी के पेड़ लगते हैं। तो हमारे इस्कॉन के लिए ये भाग्य है कि ब्रिटिशों के काल से 1.5 लाख पेड़ फंसी के एक ही साथ में लगा सकते हैं, इतनी जगह हमको ब्रिटिशों के समय पर दी गई, उनके जो भी कुछ था, और वो ही हमारे कब्जे में फिर आया इस्कॉन बनने के बाद में। और आज भी इस्कॉन के तरफ से जगन्नाथ की रथ को बनाने की लकड़ी जो है वो जंगल से, हमारे जंगल से आती है, उसको मेंटेन करते हैं। हाँ, और वो जो इतनी सारी लकड़ी है जिसके आप बहुत ध्यान से बड़ी बढ़िया से रथ बनाते हैं, उसका क्या होता है आगे, वो पूरा डिसमेंटल करके किचन में जाता है, वो साल भर के ईंधन के लिए उसका उपयोग होता है। फिर अगले साल के लिए जब रथ टूटेगा वापस, तो फिर उसको वापस उपयोग में लाया जाएगा। ये सब बड़ा फैंटास्टिक सिक्वेंस है पूरा, ये नेचुरल साइकिल है पूरी। तभी अनवसर काल का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक माधवदास नाम के भक्त थे, बहुत बढ़िया भक्त है, उनका भक्तमाल में भी कथा आती है, उनको उनका उड़िया में तो बहुत ज़्यादा गौरव है, क्योंकि कुछ समय वो वृंदावन में रहे, उसके बाद में वो जगन्नाथपुरी में जाकर सेटल हो गए अपने जीवन के अंतकाल में। तो वो इतने विरक्त भक्त थे, अकेले नदी समुद्र किनारे रहते थे। अभी आप बोलेंगे इतना क्या बड़ी बात है, इतने सारी जनता रहती है, इतना सारे होटल्स वहाँ पर है, इतना क्या प्रॉब्लम है। उस ज़माने में जगन्नाथपुरी के समुद्र किनारे कोई जाने की हिम्मत नहीं करते थे रात में, क्योंकि सुनसान जगह रहती थी, वो पक्षी भी कीटक भी वहाँ पहुँचता नहीं था, इतना डेंजरस जगह हुआ करती थी सुरक्षा के माध्यम से रूप से। तो वही ये वहाँ पड़े, दिन में पड़े, उनको दस्त हो गया, तो कहते हैं संस्कृत में संग्रहणी, और ऐसा दस्त हो गया कि जैसे वो जहाँ पड़े हैं वहीं दस्त कर रहे हैं, वहाँ से उठने की शक्ति भी नहीं है, इतने कमज़ोर, हाइपोटेंसिव, हाइपोग्लाइसिमिक इतने सब हो रहे हैं कि वहाँ से उठकर धोने की या और जगह जाने की कोई शक्ति नहीं, वहीं पड़े हैं, वहीं दस्त कर रहे हैं, वहीं से इसी में पड़े हुए हैं। तो बीच रात में एक लड़का आता है, बोलते तो महाराज जी आप बड़े परेशान हो। तो महाराज जी को कहा बोलने की भी शक्ति नहीं है, तो वो लड़का जो है उनकी टट्टी साफ करता है, तो चला जाता है। इनको इतनी ग्लानी है कि वो देख भी नहीं सकते, पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम अपने होश में नहीं है। तो अगले दिन भी आता है, उसके बाद में इनका थोड़ा सा होश संभलता है, तो आँख खिलखिला करके देखते हैं तो कोई लड़का है। बोलते कौन हो बालक तुम, क्यों मेरी सेवा कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पड़े हुए हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं है, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। थोड़ा और होश संभलता है, तो उनको लगता है इतनी बीच रात गए यहाँ पर कौन आ सकता है, किसकी हिम्मत है ऐसे यहाँ पर आने की, यहाँ पर तो भगवान ही आ सकते हैं। तो उसको अनुभूति हुई थी भगवान है ये मेरी टट्टी साफ कर रहे हैं। तो कहते हैं आप अपना रूप दिखा दो, आप क्यों छुपा रहे हो अपना रूप। मतलब कौन सा रूप दिखाऊं मैं, आपको तो बालक हूँ यहाँ का जगन्नाथपुरी का। नहीं नहीं बीच रात गए यहाँ पर कौन हिम्मत कर सकता आने की, हे भगवान आपका रूप दिखा दो। तो जिद करने के बाद उनको रूप दिखा देते, और फिर भगवान क्या रूप दिखा रहे, अपना कार्य कर रहे हैं भगवान, अपनी भक्ति की सेवा कर रहे हैं। थोड़ा नहीं नहीं भगवान मुझे हाथ नहीं लगाना, आप तो जगन्नाथ है, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरी सेवा करो। वो भी इतनी गंदी सेवा कर रहे हैं, नहीं नहीं मत करो मत करो, फिर भी जगन्नाथ जबरदस्ती सेवा कर रहे हैं उनकी। और ये भी इतने कमजोर है कि उनको विरोध भी नहीं कर सकते भाई, तो कुश्ती खेल के उसको मना करे ऐसा भी नहीं है। तो ये सब करते करते ना 15 दिन बीत गए, 15 दिन से 10 चल रहे, और 15वें दिन थोड़ा इनको शक्ति आ गई तो वो भागने लगे उठ के, बोला नहीं करने देंगे आपको। तो भगवान ने कहा अरे भागो मत, बात तो करेंगे कम से कम, अब भागो मत भागो मत। तो वो रुक गए एक जगह पर, अब बात करने लगे। तो बोले क्या है ये, मुझे ऐसा कष्ट हो रहा है, आप मुझे और कष्ट दे रहे हो मेरी सेवा करके, इतना आपको कष्ट हो रहा है मुझे मेरे कष्ट को देख के, तो मेरे कष्ट को मिटा दो ना आप, आप तो भगवान हो, लॉजिक है ना, आप तो भगवान हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो बोले नहीं 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 मैं ये नहीं कर सकता, तो आप बताओ मेरे जीवन में कितना दिन का कष्ट बाकी है। वो कहते हैं भगवान कि मेरे भक्तों के जीवन में मैं चाहता हूँ कि सारे कष्ट खत्म हो जाए, उनके कोई भी कष्ट बचे नहीं, कोई कर्म बचेगा नहीं, तो फिर दोबारा नहीं आएंगे मेरे धाम में चले जाएंगे। इसलिए बोले जो भोगना है भोगने दो उनको, एक ही बार पिछले जन्म का अगले जन्म का एकत्र करके एक ही जन्म में फिनिश करने का कोशिश करते हैं। तो पूछते कितना दिन का कर्म बाकी है, बोले 15 दिन और बाकी है, टोटल 1 महीने का था, 15 दिन हो गए अभी। तो बोले 15 दिन का मिटा दो फिर आप मेरा, इतना आपको मुझे देखकर कष्ट हो रहा है, मुक्त कर दो मुझे। बोले नहीं कर सकता मैं। तो फिर क्या करोगे, रोज आके मेरा छाप करते रहोगे और मुझे और कष्ट दोगे। तो भगवान ने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम्हारा दर्द मुझे दिखा नहीं जाता और तुम मुझे अपनी सेवा करने नहीं देते, तो मैं एक ही कर सकता हूँ, आपका 15 दिन का जो कर्म है बीमारी का वो मैं अपने पर लेता हूँ। तो भगवान ने वो 15 दिन का कर्म अपने ऊपर लिया और माधवदास को उसी समय मुक्त करके गौलोक धाम भेज दिया। और वो 15 दिन जो है वो अनवसर काल है, अपने प्रिय भक्त की स्मृति में। अभी आपने 15 दिन खोया तो उसका कर्म खत्म हो गया ना, लेकिन हर साल उसकी याद में भगवान 15 दिन बीमार पड़ते। क्या प्रेम है भगवान का अपने भक्त पर, ऐसे भगवान पर हम क्यों नहीं प्रेम करते हैं, क्यों दुनिया पर प्रेम करते हैं, दुनिया के विषयों पर प्रेम करते हैं, दुनिया की वस्तु जो नश्वर है तो समाप्त होने वाली है, नाश होने वाला है, ऐसे वस्तु पर इतना प्रेम करते हैं। और जो ना बिल्कुल चिरंतन भगवान, प्रेमी भगवान है, सदैव हमारे साथ में रहते हैं, ऐसा कोई अपना साथी है क्या जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है। अरे जन्म जन्मांतर में कीड़ा मकड़ा बन जाएंगे ना तो भी उसके साथ भगवान परमात्मा के रूप में साथ निभाते हैं। कौन सा ऐसा दोस्त आपका है बताओ जो आपका साथ निभाएगा, चाहते हुए भी नहीं निभा सकता है। इच्छा तो बहुत है लेकिन हमारे हम खुद ही बद्ध हैं, तो हम क्या किसी को साथ देंगे। एक काल का झटका आएगा तो साथ 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 करने वाले कहाँ बिखर जाएंगे, कहाँ खो जाएंगे, किसी को पता नहीं। कौन माँ, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन बेटी, कौन परिवार, कोई पहचानेंगे भी नहीं अगले जन्म में कौन थे वो, इतने बिखर जाएंगे। लेकिन एक परमात्मा हमारे ऐसे हमारे साथ में सभी जन्मों में, गौलोक धाम से लेकर पृथ्वी में और नरक में जितने भी जन्म हम लेंगे, जितना कष्ट भोगेंगे सुख भोगेंगे, सब जगह हमारा साथ देते हैं। ये एक कारण हुआ माधवदास का कर्म। दूसरा कारण यह है कि साल भर अपने भाई और बहन के साथ बैठते हैं, है ना, 360 में से 345 दिन तो साथ में भाई बहन रहते हैं। पत्नी खाली किचन में रहती है, उसका काम खाली भोजन बना के भेजना है। तो बीमारी के बहाने कहते हैं वो लक्ष्मी देवी के साथ में एकांत संग भी करते हैं, ये भी एक कारण है उसका कि अपनी पत्नी को। तो इससे हम क्या सीखते हैं, घरवाली को समय दो, कितने भी बिजी रहेंगे घरवाली को घरवाली का समय देना जरूरी है, और घर वालों को घरवाली को समय देना जरूरी है। डोंट टेक इट लाइटली, कितना भी बड़े बिजनेसमैन होंगे, कहीं दुनिया भर ट्रैवलिंग करते होंगे, समय निकाल कर क्वालिटी टाइम दे दो, नहीं तो गृहस्थी में गड़बड़ होगा निश्चित रूप से। तो यह अनवसर का काल हो गया। तो हमारे मित्र कहते हैं कि ये तो बहुत संक्षिप्त है, इसमें बहुत दो दो घंटे का वर्णन है, कैसे करते हैं वो अनवसर काल में सेवा। उसके बाद में क्या होता है, नव यौवन दर्शन होता है। अभी हम थोड़ा सा भागेंगे जल्दी जल्दी। भगवान को नव यौवन बनाया जाता है बहुत पेंटिंग वेंटिंग करके। अभी यहाँ पर मूर्ति को पेंटिंग करते हैं कि वहाँ पर सजा धजा के उनको बहुत तैयार। और अभी भगवान को, भगवान ने बताया मुझे घूमना है अभी जाके, तो लक्ष्मी देवी से मिलते हैं आखिर में, कहते हैं मैं 2 दिन जरा घूम के आता हूँ, बहुत बोर हो गया मुझे घर में बैठ के। 2 दिन की परमिशन मिलती है उनको, तो भाई बहन को लेकर घूम गया था, आप भी थोड़ा बैठो आराम कर। अभी कल जाना है, यानी कि आज आषाढ़ प्रतिपदा है ना, तो कल जाना है, तो आज शाम को ना सज धज के सबको दर्शन देते हैं। वो जो अणसर पिंडी है ना, उससे बाहर निकल के फिर वेदी में आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल स्थान पर आ जाते हैं, और वहाँ पर फिर सबको दर्शन देते हैं। और देखो आपने एक मंदिर में नोट किया क्या, कितने लोग गए थे मंदिर में नेत्र उत्सव देखने के लिए, क्या डिफरेंट देखा उस दिन आपने, बताओ क्या डिफरेंट देखा। भगवान जहाँ बैठते हैं रोज वहाँ से नीचे बैठे थे वो, क्या मीनिंग है उसका, वेरी ईगर टू गो, ऑलरेडी एक स्टेप नीचे उतर के खड़े हैं। वहाँ पर भी जगन्नाथपुरी में रत्नवेदी से ऊपर नीचे आते हैं वो, और रत्नवेदी के नीचे आकर उस दिन जितने भक्त उनको मिलते हैं उनको रात भर गले मिलते हैं, होल नाइट गले मिलते हैं, आतुर रहते हैं। और उस रात को वो एक प्रेयर का छुट्टी भी लेते नहीं है, वो भी जगे रहते हैं, सबको मिलते हैं, जो जो गए ना, होल नाइट मंदिर ओपन रहता है, पूरा रेल चेल भगवान। और उनको ना वो होता ना डाब डाब, यानी नारियल होता ना पानी वाला नारियल, उसमें कैंपर डालकर एक ड्रिंक बनाते हैं, आप अभी ट्राई मत करना उसको, आपको लगेगा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ही, उनको भोग लगाएंगे फिर हम पियेंगे, हमारी मृत्यु हो सकती है, ध्यान रखना इस बात का। तो जैसे नारियल के पानी में कपूर डालते ना तो नशीला ड्रिंक तैयार होता है, और वो जगन्नाथ जी पीते हैं उसको, रात को भोग लगाते हैं उसको, क्यों पीते हैं वो, उनको एकदम नशे में चूर होकर जाना है, क्योंकि उनका भाव क्या है, मैं वृंदावन जाना है, ब्रजवासियों को मिलना है, तो वो आनंद में विभोर होते हैं, और ऐसे आँखें गोल गोल घूमती हैं उनकी, रीलिंग आईज, और रात भर वो नशे में आनंद में प्रेम में आतुरता में व्यक्त रहते हैं, भक्तों को मिलते रहते हैं, मैं जा रहा हूँ वृंदावन जा रहा हूँ वृंदावन जा रहा हूँ, तो लोग उनको भी, और कहते हैं कि उस समय पर जो वरदान मांगना है मांग लो, वो तथास्तु करने के मूड में रहते, वो सुनते ही नहीं है, तथास्तु ही बोलते रहते हैं भक्त लोग बड़े चतुर रहते हैं, वो रात में जाकर पूरी लिस्ट पढ़ा देते हैं, बोलो तथास्तु तथास्तु फिर अगले दिन क्या होता है, उसी दिन एक और एक घटना होती है। एक बार एक गणेश भट्ट नाम के व्यक्ति आए थे जगन्नाथपुरी में, गणेश जी के भक्त थे, उनको बताया था कि वो जगन्नाथपुरी में जो है वो भी गणेश जी है, और क्योंकि गणेश जी उनके लिए परमात्मा परम भगवान है उस व्यक्ति के लिए, और कहा है उनका ही स्वरूप जगन्नाथपुरी में बैठा हुआ है नीलाचल में, तो वो कुतूहल में आए देखते हैं कौन है, तो देखा तो कोई सुंड नहीं है कुछ नहीं है, तो बोले ये तो गणेश भगवान नहीं है, ये नहीं, ये भगवान नहीं है, जाने लगे तो जगन्नाथ जी को लगा रहे मेरे पास अगर लौट के जा रहे नाराज होकर, तो उन्होंने किसी को भेजा ऐसे संदेश देने के लिए, जाओ उसको रोको कुछ देर के बाद दोबारा आने को बोलो तो चला गया था, वापस आ गया वो, जब वापस आया तो जगन्नाथ जी और बलदेव के दोनों के सुंड निकले हुए थे, दोनों हाथी बनकर बैठे हुए थे, तब उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया, बोले ये मेरे भगवान है। ये लीला हुई थी उसी दिन नेत्रोत्सव के दिन, इसलिए सब मंदिरों में उस दिन हाथी वेश गजवेश का दर्शन होता है, जगन्नाथ और बलदेव जी को सुंड बनाकर हाथी बनाया जाता है, गजवेश धारण कराते हैं, और जगन्नाथ जी ना ललित ललित भगवान है, यानी उनको अलग अलग ड्रेस पहनने में बड़ा आनंद आता है, उनके ड्रेस के ऊपर एक पूरी किताब है, वो किस दिन कौन सा वेश धारण करते हैं साल भर में, अरे जगन्नाथपुरी यात्रा में हम पहुँचते हैं, साल भर में जितने उत्सव होते हैं वो अलग 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 ललित वेश धारण करते हैं, बामन वेश और हाथी वेश, नरसिंह वेश, चक्रवेश, गोपाल वेश, बहुत सारे वेश धारण करते हैं, उसके अंदर उसका वर्णन भी दिया है, उसमें कौन से अलंकार पहनते हैं, कौन से भंडार से कौन से फूलों की माला सोने की निकालते हैं, और सबसे बेस्ट वेश कौन सा है उनका, शूनावेश, 1000 किलो का सोना पहनते हैं उस दिन, वो अलग अलग प्रकार, उसका भी एक लंबा लिस्ट है, कितनी माला है, कितने कुंडल, कितने पैर, कितने हाथ, सब उसका वजन दिया हुआ है। एनीवेज सो वो अगले दिन जब निकलते हैं बाहर, अभी सुबह होती है, रात को भी दर्शन दे दिए सबको, तो सुबह जब निकलते हैं उसको कहते हैं पहंडी विजय या पांडु विजय कहते हैं, आपने देखा है टीवी पे उसको कैसे झूलते झूलते झूलते, तो पंडाओं को पूछो आप अरे आप लोग झुलाते क्यों? तो आपको बताएंगे हम नहीं झुलाते हैं, वो खुद झूलते हैं, हम खाली संभालते हैं उनको तो गिर न जाए। कभी भी उनको मिलो आप, अरे हम नहीं कालिया को झुलाते, कालिया खुद झूलता है, हम खाली पकड़ते हैं कि भाई गिर न जाए बस। और उनको पता है वो झूलने वाले, इसलिए उनको सब पूरा पैकिंग करते हैं, पूरा फोम वोम लगा के पूरा अच्छा टाइट पैकिंग करते हैं हाथ पैर को सब, और खींच खींच के लेके आए। फिर मैंने आज भी सुबह, मुझे सुबह के प्रवचन में किसी ने प्रश्न पूछा, मुझे वो जब ये वो ऊपर जाते हैं ना तो वो दो दो डंडी उनको घुमाते रहते हैं सब लोग, क्या है वो डंडी सब? किसी को पता है? वो मुरली का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब मुरली का प्रतिनिधि है दो डंडियाँ। तो बहुत सारे पंडाओं के हाथ में दो डंडियाँ होती है, वो टक 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 बजाते रहते हैं बार बार। क्या कर रहे हैं? उनको पता है कि हमारा ठाकुर जो है ना इतना झूल रहा है, इतना झूल रहा है, इतना मदमस्त हो गया है, वो सो सकता है बीच में, बेहोश हो सकता है, तो उसको बार बार वो मुरली की याद दिलानी है। आप मुरली बजाने के लिए वृंदावन जा रहे हो, सोने का वक्त नहीं है, टक 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 बजाते रहते। मैंने एक बार वो ऊपर चढ़ रहे हैं भगवान पांडी विजय, यानी पहले चक्र आता है बीच वाले रथ पे, तो उसके बाद सुभद्रा आड़ी आती है, क्योंकि वो तो सबके सामने अपना भाव कैसे प्रकट करेगी, उसको वो आड़ा लेके आते हैं। फिर झूलते झूलते बलदेव जी आते हैं, फिर लास्ट में जगन्नाथ जी आते हैं। तो वो अभी जब रथ है ना उस पर ऐसे चढ़ान होती है बढ़िया से, उस पर उनको चढ़ा रहे हैं, तो वो ऐसे 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 आगे पीछे ऐसे ऐसे हो रहे हैं। और एक बार जब मैं देख रहा था तो वो ऐसे ही गिर गए लेफ्ट साइड में। अभी सारे भक्त लोग जब वो ऐसे 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 हो रहे हैं, उनको भी उनको संभालने को नहीं हो रहा है। तो उतने में कुछ ये पंडा लोग चार पांच लोग आए, ऐसे डंडा घुमाने टक 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 घुमाने लगे और गाली बकने लगे, ए कालिया सोने का समय थोड़ी है ये, उठो वृंदावन जाना है, मुरली बजाना है, क्या तुम बीच में जाके सो जाते हो, उठो यहाँ पर। तो देखा उसके बाद में त्यों के ऊपर आ गए। सब सब हकीकत है, ये वास्तविकता है। और बार बार लगातार वो बार बार उसको ना वो कहीं सो ना जाए बीच में रास्ते में नशे में, इसलिए वो डंडी पकड़ कर उनको याद दिलाते हैं। फिर जाके उनको फिर ऐसा करने के बाद बहुत मुश्किल से गोल घुमाते हैं। फिर आपने कभी देखा रथ में कैसे खड़े रहते हैं? रथ में ऐसे खड़े रहते हैं, तो इतनी नशा है उनके अंदर वृंदावन जाने की, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, उसको टेक के ही खड़े रखते। फिर उनको भोजन भोजन कराते हैं रथ में, जो उसको पांडी विजय कहते हैं। उसके बाद में राजा आता है और वो चेरा पहरा ये उत्सव करता है, दोनों मिलकर एक उत्सव नहीं है, दो एक्टिविटी है, चेरा पहरा। चेरा में क्या होता है? सुगंधित द्रव्य, सुगंधित जल और सुगंधित पुष्प उनके रस्ते पर वो क्या कहते हैं उसको, सिंपड़ जाता ना अपन क्या मंडो, सींचते हैं उसको, तो राजा को दे जाते हैं, राजा पूरे रथ में उसको सींचता है, सुगंधित जल और सुगंधित पुष्प, उसको कहते हैं चेरा। चेरा और पहरा मतलब सोने की सोहनी, यानी झाड़ू जो सोने का हैंडल है उसका, वो बुहारी लेकर वो रथ के सामने बुहारी करते हैं। बुहारी यानी झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना ये कॉमन शब्द है, बुहारी ये संस्कृत अच्छा शब्द है, बहुत श्रेष्ठ भाषा है। फिर राजा चेहरा परा करता है, उसके बाद में राजा हर रथ में जाकर बलदेव जी की, सुभद्रा जी की, चक्र जी की, जगन्नाथ जी की पूजा करता है, प्रदक्षिणा करता है। सब पंडा उनको पहले पालकी में लेके आते हैं, उनका घर सामने ही है, हमारा चैतन्य मठ है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु है, उनका जो जन्म स्थान है उसके सामने ही राजा का महल है, और वहीं से लक्ष्मी भी आती है गुस्सा करके, और वहीं से राजा भी आते हैं, वहीं रहते हैं राजा। तो राजा को पालकी में बिठा के लेके आते हैं, फिर वो उतरते हैं, फिर रथ में चढ़ते हैं, फिर ये सारा काम करते हैं चेरा पहरा। और राजा के द्वारा रोड साफ हो गया, झाड़ू नहीं, राजा बता रहा है अपनी क्रिया से कि मैं भी राजा हूँ लेकिन मैं प्रधान सेवक हूँ, सबसे मेन सेवक मैं हूँ, लेकिन सेवक हूँ मैं, इसलिए वो भी एक न्यूनतम काम करते हैं। और वहाँ पर जो झाड़ू लगाने का काम है ना, जिसको हम लोग न्यून मानते हैं, वो एक बड़ा सम्माननीय काम है वहाँ पर। यहाँ पर भी रथ के सामने वो सोनेरी पेपर लगाने वाला झाड़ू जो है ना, वो लगाने के लिए सब लोग तरसते हैं, वो किसी के हाथ में दिया तो उसका बड़ा सम्मान है, कोई इसको इनको दे दो, महापौर को दे दो, हे मिनिस्टर को दे दो, ये विधायक को दे दो, यानी वो सम्मान की बात हो गई। एक तुच्छ सेवा जो है, एक शुद्ध भक्त जब प्रेम से करता है तो वो सम्माननीय हो जाती है, ये इसका प्रमाण है। हमको भी दे गई करो तो हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि हमको वो झाड़ू मारने को दे रहे, लेकिन उस दिन को छोड़कर बोलो झाड़ू मारने के लिए, कोई नहीं करेगा उसको, क्योंकि वो समय का और घटना का महत्व है। उसके बाद में फिर रथ यात्रा आरंभ होती है। सबसे पहले बलदेव जी निकलते हैं, उसके बाद में सुभद्रा जी, और विचार पूर्वक सुभद्रा जी के साथ में वो चक्र जी खड़े हैं बॉडी गार्ड, क्योंकि घर में तो वो बाजू में रहते हैं लेकिन बाहर जा रहे तो परी माता जी के साथ में होना चाहिए। तो सबसे पहले बलदेव जी बीच में उनको रखते हैं, और उसके बाद जगन्नाथ जी निकलते हैं। और नियम क्या है रथ यात्रा का कि सूर्योदय में आरंभ, सूर्योदय में सब कुछ शुरुआत होता है, लेकिन आप कभी भी पांडालों को पूछिए कितना बजे रथ शुरू होने वाला है तो क्या बोलेंगे आपको, कालिया जाने, क्योंकि कितना भी आप मुहूर्त निकालेंगे, कितना भी काम टाइम करेंगे, अंदाज निकालेंगे 2 बजे 3 बजे 1 बजे 1.5 बजे, तो मैंने देखा है कभी 1 बजे निकलते हैं, कभी 2 बजे निकलते हैं, इस बार 4 बजे तक हिले ही नहीं वहां से। और आप कुछ भी करो, कितना भी आपका प्लानिंग करो, राजा भी पूजा करके चला गया है, आप रथ आप आगे हिला ही नहीं सकते। जब जगन्नाथ की मर्जी होगी तब रथ हिलेगा, और ये हकीकत है, कोई ऐसे कहने वाली डायलॉग की बातें नहीं है। और शुरू कभी भी होगा लेकिन सूर्यास्त में रुक जाएगा वो, तो मैंने दिखाया आंखों से, कभी उनकी तार जो है ना वो बिजली की तार में उनका मुकुट अटक जाता है, उनका शिखर क्या कहते हैं उसको, नंदी घोष का, तो भारी सारी मिलिट्री आती है कुछ चढ़ती है ऊपर ऊपर, उतने में सूर्यास्त होता है तो वहीं रुक जाते हैं। सूर्यास्त में जहाँ पर भी रथ खड़े हैं वहीं पर रुकना है उनको, भाई आगे प्रवेश आगे नहीं यात्रा कर सकते। तो तुरंत उनका जो आपने देखा नहीं पता नहीं, जब रथ में खड़े रहते ना तो उनका बैग बिस्तरा सब आ जाता है उसके अंदर, बड़े बड़े पेटारे आ जाते हैं अलंकार के साथ, कपड़े उनके भोजन का सामग्री, तो हम लोग पैकिंग करते ना वैसे जाते हैं, क्योंकि 1999 के समय पर रथ यात्रा में मैं वह गया था उस समय, तो कैसी असीम कृपा थी, 4 घंटे मुझे जगन्नाथ के रथ पर बैठने का अवसर मिला। जगन्नाथ रथ में आ चुके हैं और राजा अभी तक नहीं आया है, तो वो 4 घंटे बीच में जगन्नाथ के बॉडी को मसाज करने की सेवा मिली 4 घंटे तक। सामने लाखों लोग ऐसे बिखरे हुए थे, मैंने एक एक व्यक्ति सबके लिए प्रार्थना किया, इतने घंटा का समय था, इतने लोगों की पहचान थी, रिश्ते, सबके लिए प्रार्थना कर लिया। तब मैं देख रहा था धीरे धीरे पेटारे आ रहे हैं, बॉक्स आ रहे हैं, खाने पीने की सामग्री आ रही है, सब जा रहे हैं ना घूमने के लिए, तो जैसे रथ रुकता है ना तुरंत उनका भोग आता है, तुरंत आता है तो भोग लेते हैं, उनकी पूजा होती है। और अभी अभी कुछ साल के पहले की बात है, अभी तक कुछ साल पहले तक रथ रुकते ही सब लोग रथ पे चढ़ते थे और जा जाकर जगन्नाथ जी को आलिंगन देते थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र सबको आलिंगन देते हैं, और जितना चाहे उतना पंडा भी बोलेंगे ना, ए चलो हटो हटो उछरे को चांस दो, बोला दिल से मिलो, हृदय से मिलो उनको, सबसे दयालु भगवान पूरे जगत में वो जगन्नाथ जी। फिर बीच में कुछ लीगल प्रॉब्लम हो गया तो अभी बंद हो गया, अभी वो कॉर्डन होता है उसके पीछे हम सब खड़े रहते, हमारी छोटी सी बिटिया है ना उसने भी सबको गले लगाया है, व्हीलचेयर वाली बीबी को उठा उठा कर सब लोगों ने, जगन्नाथ जी पंडा लोगों ने उनको मिला है सबको, सुभद्रा जी को जगन्नाथ जी को, इतनी कृपा है। फिर एक दिन रहते हैं, फिर अगले दिन सुबह सूर्यास्त के समय वापस शुरू होता है। इस समय तो आधे में रुक गए, बहुत जगह पहुंच गए थे लेकिन रुक गए, फिर सुबह शुरू हुआ तो 11 बजे के पहले ही पहुंच गए गुंडीचा के पास। तो गुंडीचा में जिस दिन पहुंचते हैं उस रात को वहीं रहते हैं, उसके अगले दिन शाम को उनका फिर पांडी विजय होता है, रथ में उतारने का विधि वही पांडु विजय। तो जिस साल में ये कृपा हुई थी ना उसी साल में जब उनको उतारने का समय आया तो मैं, मुझे अभी भी याद है, जगन्नाथ जी ऐसे उनको खींच खींच के लेकर जा रहे हैं, उनके बाजू से मैं चल चल के उनको वैद्य तक पहुंचा गया है। एक ही बार जीवन में ऐसा मौका मिला, पता नहीं कैसे मिला, मुझे कुछ रोका नहीं, मैं जाता रहा, जगन्नाथ जी को ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं और मैं उनके बाजू में इनको देख देख के चल चल के चल के, फिर उनका पिसारा जो है ना वो ऐसा गोल पहना था ना वो भी मुझे मिला, और फिर उसके आगे फिर वो अंदर प्रवेश नहीं है, तो मैं वहाँ देख के सब उनको चढ़ाने का सब देखा। पिछले साल जब गया था तो जब मैं वहाँ पर अंदर पहुँचा गुंडीचा मंदिर में, तो रथ यात्रा में जो श्रृंगार किया था ना वो एक एक करके 3 घंटे में उन्होंने उतारा, यहाँ का पूरा एक श्रृंगार, यहाँ का श्रृंगार, यहाँ का श्रृंगार, 3 घंटे लगे उनको, एक पूरा ट्रॉली वहाँ पर खड़ा था, वो उतर रहे थे उसको निर्माल्य कर दिया उनको पूरा आराम से एकदम। फिर उनको मुँह दातुन किया, आईने में देखा कर उनको दातुन करते हैं, मंत्र बोलते हैं, बहुत सारा सुंदर विधि। तो फिर वो गुंडीचा पहुँचते हैं, द्वितीया के दिन पहुँचे ना, निकले ना, हो सकता है तृतीया के दिन अंदर जाएंगे या तो चतुर्थी के अंदर जाएंगे, 2 दिन तो हो गए ना। लक्ष्मी देवी फिर इंतज़ार कर रही है, क्या आए नहीं लौट के। तो उनको क्रोध आता है, मुझे 2 दिन का बोलने बोलकर गए थे, 3 दिन हो गए फिर भी नहीं आए। बोलते बड़े मस्ती में रह रहे उधर, कोई याद भी नहीं आती उनको। तो लक्ष्मी जी को क्रोध आता है, और वो मैंने लक्ष्मी का जो उत्सव है ना उसको कहते हैं हेरा पंचमी, वो कल के दिन हुआ, कल के दिन हेरा पंचमी का दिन था, आज षष्ठी है। तो वो ना रात को निकलती है, बड़ा सज सज के चक 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 धाइना अलंकार पहन के, लक्ष्मी देवी का मंदिर भी यहाँ पर, उनका विग्रह जो है ना उनका उत्सव विग्रह, उनको पालकी में बिठाते हैं, और लक्ष्मी देवी के ना अलग भक्त होते हैं, सबके अलग अलग भक्त हैं, सब अलग अलग परिवार है, कोई मिक्सअप नहीं होता है। सुभद्रा जी के परिवार अलग, बलदेव जी के अलग, और जगन्नाथ जी के अलग, सब अलग अलग पंडा होते हैं, उनका कोई सेवा मिक्सअप नहीं होता है। तो ये लक्ष्मी जी के सेवक अलग, वो सब किचन में काम करते हैं, हजारों हजारों उधर कुक्स होते हैं, उसमें मेन 1000 होते हैं, और उसमें 750 से 500 कुक जो है वो फायर वर्क करते हैं, फायर के साथ जो करना है, और बाकी 500 लोग खाली काटने पुटने का काम करते हैं। वो भी ये दिखने लायक चीज़ है, 2 एकड़ का किचन है लक्ष्मी का, अंदर में प्रवेश मिलेगा आपको। तो फिर वो रात को निकलती है पालकी में बैठ के, उसके सारे पंडा भी सज सज के आईना गहना गहना वगैरह पहन के निकलते, जिस साल में उधर था, रात को ना 11:30 बजे वो निकले, और उस दिन इतनी धुआंधार वर्षा हुई, क्या कहूँ आपको, इतना तक पानी था, सब लोग इतने में, सारे पंडा भी इतने में, वो केवल जल की थोड़ा ऊपर पालकी पकड़ के चल रहे, लेकिन लेफ्ट राइट, वाह क्या उत्साह है लक्ष्मी देवी के अंदर, इतनी घनघोर वर्षा हो रही है फिर भी इतना क्रोध है कि जाके उनको मिलना है, क्यों नहीं आ रहे आप, पूरा हमने उनका साथ दिया, पूरा जुलूस में चल के उनके पास, उनके साथ में चले, और फिर वो पहुँचे वहाँ पर, और पहुँचते क्या क्या उन्होंने, सारे पंडाओं ने मिलकर जगन्नाथ के रथ के आरी तोड़ दिया, स्पोक्स तोड़ दिए। तो शास्त्र में वर्णन दिया है कि लक्ष्मी देवी की जितनी भी सहेलियाँ थी, जितनी भी सेविकाएँ थी, सब हाथ में डंडा वंडा लेके जाके जगन्नाथ के रथ को पूरा पीटती है, वो इस रथ में बैठ के आए थे ना, इसको पहला दंड दे दो, और सारे जगन्नाथ के सेवकों को पकड़ पकड़ के बांध देते हैं, हाथ मरोड़ के उसको अरेस्ट कर देते हैं, और बहुत गालियाँ बकते हैं। तो वो पंडा लोग जगन्नाथ के पांडवों को बहुत गाली बकते हैं वहाँ पर। फिर लक्ष्मी देवी के पाल के ऐसे क्रोध में अंदर जाती है, तो जगन्नाथ को खबर पहुँचती है कि हमारी रानी बहुत क्रोध में है, क्या म्हणतात मराठी मध्ये, आता काय खरं नाही। तो अपने पंडावों को बोलते हैं मेरे बंद करो दरवाजा, एक माला मेरी भेजो और मुझे बंद करो, मुझे वो सहन नहीं होगा, मैं झेल नहीं पाऊंगा उसको। तो बड़े उम्मीद से अंदर आती है वो, चलो मैं सवाल पूछती हूँ उनको, क्यों नहीं आ रहे आप। तो उनके आंखों के सामने थोड़े अंतर पे ही मंदिर का दरवाजा बंद होता है, और एक माला बाहर आके लक्ष्मी देवी को पहुंचती है, लक्ष्मी देवी उसको ऐसा फेंकती है और पैर जो है जमीन पर ढाड़ करके गुस्से से पटकती है, और वैसे ही गोल राउंड मार के बाहर निकलती है, और फिर वही पंडाओं के ऊपर आतंक, मालिक का क्रोध पंडाओं के ऊपर निकाल रहे, और फिर वो चली जाती है। वो कहते अभी तुम वापस आ जाओ, मतलब मन में ही कहते, क्योंकि मिले तो नहीं ना, सुनाने के लिए मिले किधर, तो मन में कहते हैं निश्चय कर लेते हैं आ जाओ वापस, अभी तुम्हारा पूरा अस्तित्व जो है मेरे भोजन पर डिपेंड है, साल भर में 56 भोग बनाती हूँ, मेरे ही सहारे तुम जीते हो यहाँ पर जगन्नाथपुरी में, और मेरे लिए ही प्रताड़ना करते हो, चलो लौट आओगे तो भूखा रहूँगी आपको। वापस जाती है ना, सारे चूल्हे जो है 700 चूल्हे वहाँ पर 700 मट्टी के बने हुए हैं, कई सर के हैं, वो सारे तोड़ देती है, मतलब अगर चूल्हा नहीं रहेगा तो भोजन कैसे बनेगा, नया चूल्हा बनाना पड़ेगा ना, तो चूल्हे सारे तोड़ देती है। तो उस दिन उन दिनों में वो पूरा किचन टूट जाता है मिट्टी का, और फिर जब जगन्नाथ जी का आने का समय होता है तो दोबारा बनता है, ठीक है। ये हो गया हेरा पंचमी। उस दिन जगन्नाथ जी थोड़ा सा संभल जाते हैं, भाई गड़बड़ कर दिया हम लोग ने, अच्छा नहीं किया। सेवकों को आदेश देते हैं, अभी तक रथ का मुँह जो है ना वो गुंडीचा की तरफ था, भी टर्न करो उसको, जाना है वापस। तो उस दिन हेरा पंचमी के अगले दिन रथ को उल्टा घुमा देते हैं, यानी कि एटलीस्ट मैसेज पहुंचेगा ना कि भाई रथ को उल्टा घुमा दिया है, घर की ओर मुंह कर दिया, यानी कि निकलने वाले हैं अभी। उसके बाद में मैंने आपको बताया, बहुत सारा वर्णन किया कि उधर गुंडीचा में जो भोजन बनता है उसका स्वाद हजारों बार नीलाचल का महाप्रसाद पाने पर भी वो स्वाद और वो कृपा नहीं प्राप्त होती है। वो प्रसाद जो है वो जैसे दर्शन महत्वपूर्ण है। 10,000 10 साल, क्या कहना, मैंने कहा बताया आपको 10 ईयर्स एवरी डे दर्शन करने के बाद भी एक दर्शन गुंडीचा का इतना महत्वपूर्ण है। वैसे ही 10 साल अगर आप प्रसाद पाते रहेंगे नीलाचल का और एक दिन एक बार गुंडीचा का प्रसाद पाएंगे तो परम 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 कृपा प्राप्ति है वो। तो वहाँ पर भगवान बड़ा आनंद लेते हैं गोपियों के साथ। और फिर बहुड़ा यात्रा यानी एकादशी के दिन वापस चलते हैं, उसको बहुड़ा यात्रा कहते हैं, वो भी हमने अटेंड किया है। बहुत धूमधाम से चलते हैं लेकिन भीड़ बहुत कम होती है उस समय, आप आराम से रथ खींच सकते हैं। तो बीच में एक जगह है साला बेग, कवि साला बेग नाम का मुस्लिम भक्त था जगन्नाथ जी का, उनका एक स्थान है वहाँ पर, वहाँ पर रुकते हैं भगवान, वहाँ से आरती पूजा होती है, वहाँ पे स्तुति गायन होता है, कवि साला बेग की कविताएं गाते हैं, भगवान को बहुत रिझाते हैं, फिर भगवान वहाँ से आगे जाते हैं। अभी ये अभी भी गुस्से में ही है ना, और जगन्नाथ जी टेंशन में है कि पता नहीं अभी जा तो रहा हूँ, जाने के बाद में क्या म्यूजिक सुनना पड़ेगा पता नहीं। और बलदेव और सुभद्रा मैया तो शांत है, बोले हमें मियाँ बीवी के झगड़े में नहीं पड़ना है, हम लोग देखेंगे दूर से, इनको जो करना है करने दो। तो जैसे ही वो 3 रथ आते हैं तो जगन्नाथ जी का मूड क्या है, चलो अंदर जाते हैं। वैसे ही उनको खबर मिली रहती ना अपने स्पाई लोगों के द्वारा, गुप्तहरों के द्वारा कि आ रहे हैं, तो वो गेट पे आती है और क्या करती है ना, एग्जैक्टली वही करती है जो जगन्नाथ जी उनके लिए उन्होंने किया था। मतलब देख रहे हैं उनको कि आ रहे हैं, उनके मुंह पर दरवाजा बंद करते थे, जगन्नाथ ने वही किया था। तो ये भी जानबूझ के दरवाजा खुला रखती है, जैसे उनकी नजर भेंट होती है धाड़ करके दरवाजा बंद करती है, अभी जाओ अभी आप अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा आप। जगन्नाथ बड़े दुखी हो जाते हैं। और अगले दिन जो है सारे सखा लोगों को, सब रोते हैं सखा लोग, अरे अभी हमारे दादा तो रो रहे हैं, दादा की पत्नी तो बहुत गुस्से में है, उनको अंदर नहीं ले रही है, इतने बड़े हमारे भगवान रोड पे खड़े हैं, उनको एंट्री नहीं मिल रही है, भाई बहन शांति से खड़े हैं, बोले क्या करें, हम भी बीच में पड़ेंगे तो हमारा गड़बड़, हमको भी रुकना पड़ेगा, हम भी गए थे उनके साथ। तो रात भर रोते हैं भगवान और उनके भक्त लोग भी रोते हैं, क्या करें क्या करें। फिर मीटिंग करते हैं, भक्त लोग सोचते हैं कि एक काम करेंगे, आपको स्वर्ण अलंकार पहनाएंगे, सुना वेश धारण कराएंगे, हो सकता है आपका ये अप्रतिम सौंदर्य देखकर लक्ष्मी देवी का हृदय पिघल जाए। तो वो सुनावेश का कार्यक्रम है ना, वो पहुंचने के बाद नेक्स्ट डे होता है, हाँ द्वादशी के दिन। 2-3 घंटे में इतना सुंदर कार्यक्रम होता है ना, जगन्नाथ जी के अकेले का स्वर्ण अलंकार जो 1,000 किलो का है और बलदेव का सुभद्रा का वो अलग है, सेपरेट है वो, सेपरेट। लेकिन जिस प्रकार से वो कोऑर्डिनेशन में वो आता है सूत्रबद्ध रीति से, जैसे आता है कौन सा सामान कौन से रथ में पहुंचाना है, कहाँ पहनाना है, इतना परफेक्ट प्लानिंग है उनका, इतना परफेक्टली ट्रेंड है सब पंडा लोग। 2 घंटे में इतने हजारों किलों का सोना जो है ना वो बराबर उनको पहना के रेडी कर देते हैं। ये जगन्नाथ जी को जब सजा रहे हैं ना सोने का, तो एक तरह से दूल्हा बना रहे हैं उनको। जब दूल्हा किसी को बनाते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है दूल्हे को, किसी लड़के की विवाह है और फ्रेंड लोग उसको दूल्हा बना रहे हैं तो दूल्हा भी खुश रहता है और बनाने वाले भी खुश रहते हैं। लेकिन बनाने वाले भी दुखी हैं और बनने वाला भी दुखी है, क्योंकि क्या उसको मालूम है, क्या लगता है उसको कि मैं दूल्हा बनूंगा सुंदर बनूंगा लेकिन यश मिलेगा क्या मेरे इस प्रोग्राम में, क्योंकि यश तो उसके हाथ में है ना, मैं सज धज के मुझे सजाएंगे बनूंगा दूल्हा बनूंगा लेकिन वो भी फिर भी अगर दरवाजा नहीं खोलेंगे तो क्या फायदा है सब अलंकार पहन के। ये विचार में वो दूल्हा भी रो रहा है और बनाने वाले भी प्रार्थना कर रहे कि भाई मान जाए मान जाए मान जाए। और सुबह वो दरवाजा बंद करके अंदर गई, उधर भी चर्चा चल रही है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, नहीं खोलूंगी दरवाजा। तो फिर वो खबर पहुंचती है कि वो सज धज के बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप जरा देखो तो सही, नहीं जाऊंगे देखने के लिए, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया था, एक माला फेंक के मुझे विदा किया था, क्या समझते अपने आप को। पूरा अस्तित्व मेरे ऊपर निर्भर है, मैं नहीं जाऊंगी, रहने दो बाहर खड़े उनको। तो सब सखियां उनको मनाते, नहीं जाओ जाओ देखो जरा जाओ देखो। तो फिर वो बड़ी नाराजी से मान की हुई है ना, बड़ी नाराजी से मान जाती है और आ जाती है, दरवाजा खोल के देखती ना, जैसे देखती है पूरा हृदय पिघल जाता है, सारा क्रोध वोध सब भूल जाती है। और बड़े प्रेम से जब दरवाजा खोलती है तो उनके चेहरे पर का क्रोध का भाव जब बदलता है तो बलदेव सुभद्रा जी तुरंत निकल जाते हैं अंदर अपने, बोले अच्छा हो गया उनको भी एंट्री मिल गई। और फिर बड़े प्रेम से, वो भी मैंने उत्सव देखा है, वो रथ में आती है, पहले रथ में जब वापस लौट के आते हैं ना, एक बार वो चक्र लगाती है पूरा, राजा के महल से बाहर आती है पालकी में, और उसके जो पांडा लोग हैं ना, वो रथ का परिक्रमा करते हैं वापस आने वाले, और गालियां बकते हैं जगन्नाथ जी को, तुम आ तो गए हो, अंदर कौन लेगा आपको, ऐसा करके चले जाते हैं। फिर भी उसको आशा है इसलिए पहुंच जाते हैं, ये सब विधि वहां पर होते हैं सब। तो फिर बड़े धूमधाम से विधि पूर्वक उनको रथ से उतार कर फिर लेके चले जाते हैं। उस दिन को कहते हैं नीलाद्री विजय, नीलाद्री विजय यानी उस दिन जगन्नाथ जी यशस्वी हो जाते हैं। एक दिन सुनावेश पहनकर रथ में रहते हैं, और नेक्स्ट डे देखो इस साल अभी एक और कार्यक्रम होता है बीच में, अभी इस साल 29 जून को जब एकादशी है ना तभी सुनावेश होगा, बोड़ा यात्रा 28 जून को होगी, 29 को सुनावेश होगा, और 30 जून को अदरप्पणा उत्सव होता है, उसका स्टडी करना बाकी है मेरा थोड़ा। तो अदरप्पणा में मैं पूरा उत्सव 2 घंटे के लिए देखा है, जगन्नाथ जी के साइज के बड़े बड़े मट्टी के बर्तन होते हैं ऊंचे ऊंचे, उसमें 2 घंटे के लिए पता नहीं क्या 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 आड़ के डाल के जा रहे, जल लाते हैं इतना सारा उसमें डालते हैं, हाँ कितना 12 प्रकार के आइटम, सब लिक्विड होता है, और 2-3 घंटे तक उसका डालते हैं घुमाते हैं डालते हैं घुमाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, और उसके बाद में वो जगन्नाथ को अर्पण करते हैं और उसको लुढ़का देते हैं, वो प्रसाद ही नहीं होता है, वो सारा जल जो है हर एक रथ में 3-3 बड़े बड़े जगन्नाथ के साइज के मट्टी के कुल्हड़ होते हैं, एक कुल्हड़ कैसा होता है ऐसा होता है ना खड़ा खड़ा, वैसे इतने बड़े बड़े होते हैं 3-3, वो सारे 3 में शायद 1000 लीटर पानी होगा, और कुछ सफेद रंग का लिक्विड बनता है 12 प्रकार के पदार्थ डालने के बाद, फिर उसको वहीं पर लुढ़का देते हैं, तो लोग उसके नीचे आके भीगने का प्रयास करते हैं, अभी तो कॉर्डन करके किसी को प्रवेश नहीं मिलता है, वो उसका नाम है अदरप्पणा विधि, वो आप देख सकते हैं, ये सब तारीख लिख के रखी है, उस तारीख को सब लाइव चलता है सब पूरा, हमने फिजिकल लाइव भी देखा है और टीवी पर हर साल देखते हैं। और फिर 1 जुलाई के दिन जिस दिन यहाँ द्वादशी होगी है ना, नहीं द्वादशी नहीं होगी त्रयोदशी होगी, उस दिन सुबह जगन्नाथ जी को उतारते हैं और फिर अपने रत्नवेदी पर बिठाते हैं। ये हुआ पूरा जगन्नाथपुरी के उत्सव का सीक्वेंस। हरि बोल। इसके बीच में 19 साल में एक बार एक उत्सव होता है नवकलेवर उत्सव, वो एक ही भगवान है पूरे विश्व में जो अपना विग्रह त्याग देते हैं और नया विग्रह धारण करते हैं और उस विग्रह को बकायदा दफन करते हैं, दफन भूमि भी है कोयलो वैकुंठ। उस दिन ये सारा उत्सव जो है ना वो फरवरी में वसंत पंचमी के बाद शुरू हो जाता है, वो कभी और बताएंगे, वो 1 घंटा लगेगा समझाने के लिए क्या होता है उस समय कैसे उनका हाँ क्या हाँ। एनीवेज सो ये पूरा अक्षय तृतीया को रथ बनने से ये उत्सव आरंभ होता है, फिर 21 दिन का बाहरी चंदन यात्रा, 21 दिन का भितोरी चंदन यात्रा, फिर स्नान यात्रा, फिर अनवसर, फिर ये सारा चीज़ के बाद में वो उत्सव समाप्त होता है। ऐसे शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति रथ यात्रा अटेंड करने के बाद में 9 दिन गुंडीचा के पास निवास करके उसका रोज दर्शन लेता है वो निश्चित रूप से इस जीवन के अंत में भगवत धाम चला जाता है। तो कभी ना कभी प्लानिंग करो आप, रथ यात्रा के दिन पहुँचो 1 दिन पहले, और हमने बीच में ये बात बताना भूल गए आपको, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर साफ किया था, जिस दिन वहाँ नेत्रोत्सव हो रहा है, जिस दिन वहाँ पर वो हाथी वेश धारण किया हुआ है, लोग वहाँ भाग रहे हैं, सब गौड़ीय वैष्णव यहाँ पर गुंडीचा मंदिर को साफ करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया था, बहुत सुंदर लीला है वो, बहुत सुंदर लीला। तो वो अटेंड करके वो करके अगर आपने जगन्नाथ जी का पहंडी विजय उतरने का भी देखा और विराजमान भी देखा और रोज दर्शन किया, 9 दिन तक वहाँ का आनंद बाजार का प्रसाद पाया आपने, और फिर जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा भी आपने अटेंड की और जगन्नाथ जी को पहुँचाया मंदिर में नीलाद्री विजय। ये अगर करेंगे ना एक बार जीवन में, तो इतना करने से ही भाव से भगवत धाम में एंट्री निश्चित है आपको, कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा, खुला रहेगा आपके लिए। हरि बोल, बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो मेरी ऐसी धारणा है मन की कि जगन्नाथ जी के भक्तों का लीलाओं का गौरव किए बिना जगन्नाथ जी का गौरव पूर्ण नहीं हो सकता है ना। तो माधवदास जी का तो मैंने आपको कथा बता दी, और दूसरे जो बड़े प्रेमी भक्त हैं उनके नाम है बंधु मोहंती। कितने लोगों ने सुना है बंधु मोहंती का नाम? बंधु मोहंती बहुत गरीब बेचारा व्यक्ति था, और कुछ छोटा सा व्यवसाय था कुछ चीज़ें खरीद के बेचने का, और इतना जगन्नाथ का भक्त था, घर में उसके जगन्नाथ के पुरी के बहुत बाहर दूर घर था उसका, उतने इतना भक्त था, घर में जगन्नाथ जी के विग्रह थे और जगन्नाथ जी को भोग लगा था जो भी कुछ गरीब व्यक्ति बना सकता है प्रेम से। लेकिन सुबह जाने के पहले उनको हिसाब किताब देता था कि मेरे पास इतना बैलेंस है इन्वेस्ट करने के लिए, खरीदी करने के लिए, और बता के जाता था कि इतने पैसे लेके जा रहा हूँ। फिर जाके उसका थोड़ा जो भी माल खरीदेगा, जो भी बिक्री करेगा उसका, और शाम को थोड़ा प्रॉफिट लेकर जो आएगा सब हिसाब जगन्नाथ को देगा, इतना लेके गया था, इतना खरीदी किया, इतना बेचा, इतना प्रॉफिट करके लाया, सब पूरा रोज का रोज हिसाब देता था। एकदम प्रामाणिक जगन्नाथ की सेवा के लिए ही काम करता था वो, जगन्नाथ को पूरा रिपोर्ट देता था। इतना प्रामाणिक शुद्ध हृदय भक्त था वो, बहुत नम्र भक्त था। उसकी पत्नी, उसके 4-5 बच्चे थे, वो सब लोग बड़े जगन्नाथ के भक्त थे। अभी ये आध्यात्मिक जीवन में भगवान को जब हम रिझाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में समृद्धि आएगी, भरभराहट आएगी, प्रॉपर्टी बढ़ेगी और सब संस्कार बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन शुद्ध भक्ति में अभी आप देवताओं की पूजा करेंगे तो ये सब कुछ होगा। जैसे देवता प्रसन्न हो जाएंगे, आपके घर में प्रॉपर्टी बढ़ेगी, व्हीकल आएगा, धन आएगा, स्वर्ण आएगा, सब कुछ आएगा, भरभराहट होगी। लेकिन जब शुद्ध परम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। भगवान बड़े रिझ गए उनसे, उनकी भक्ति से, तो क्या हुआ, उसका धंधा जो है ना वो धीरे धीरे बैठने लगा, रोज प्रॉफिट कम 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 लाने लगा, और रोज आके हिसाब किताब दे रहा है भगवान को, रोज प्रॉफिट कम 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 हो रहा है। एक दिन ऐसी अवस्था हो गई कि जो भी लेके गया वो सब समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा। आके हिसाब दिया, आज कुछ भी नहीं है, अभी कुछ पैसे ही नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो खुद भूखा, उसकी पत्नी भूखी, उसके बच्चे भूखे, तो पत्नी तिलमिला उठी क्योंकि पत्नी को अपने के लिए परेशानी नहीं है, लेकिन 4-5 बच्चे रो रहे हैं भूख से, मैया बाबा भोजन दे दो, कुछ है नहीं देने के लिए, तो उनका दुख उनको देखकर सहा नहीं गया। तो कहती है जगन्नाथ की इतनी भक्ति करते हो, चलो उनके पास जाएंगे और हमारा जो क्या कहते निवेदन उनके पास रखेंगे। तो भूखे पेट 4-5 बच्चों को लेकर पति और पत्नी निकले, हाँ, और वहाँ से उनको ना कहते 2-3 दिन लगे, दिन रात यात्रा करते 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 करते, रास्ते में सो रहे हैं, कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं है, रात को रोड पे ही सो रहे हैं, क्योंकि भूख के मारे नींद भी अच्छी आती है, पता है आपको, जब बहुत भूख लगती है ना तो कमजोरी से आदमी सो जाता है। 3rd दिन रात को पहुँचे तो पूरा अंधेरा भी हो गया था, जगन्नाथ का मंदिर बंद भी हो गया था, तो तभी जाके निवेदन करने का कोई समय नहीं था, बहुत देर रात हो चुकी थी, सब बच्चे भी बड़े थके हुए थे, तो वो लोग सो गए उधर, ये भी सो गया। उतने में ना बीच रात में, एकदम बीच रात में, मंदिर बंद होने के बाद, हो सकता है 12 के 3 के बीच में होगा नेचुरली, एक लड़का आता है वहाँ पर, उसके हाथ में एक सोने का थाल है पूरा, और पूरा जगन्नाथ का महाप्रसाद है उसके अंदर, और वो सर पे सोने का थाल में 56 भोग महाप्रसाद पर अलग अलग प्रकार के पंच पकवान उसके अंदर है, वो लेकर पुकार रहा है, बंधु मोहंती कौन है, बंधु मोहंती कौन है, ये जगन्नाथ जी के मंदिर से आपके लिए प्रसाद आया है आपके नाम से, जब बंधु मोहंती आप कहाँ हो, ऐसा जोर जोर से पुकार रहा है। तो बंधु मोहंती उठता है, बोले मुझे कौन पुकार रहा है आप, तो आवाज़ की ओर देखता है तो एक सांवला सा लड़का जो है ना, फेटा पहन के, धोती पहन के, सर पे बड़ा थाल लेके पुकार रहा है, बंधु मोहंती, बंधु मोहंती। हाँ हाँ मैं बंधु मोहंती, क्या बात है? बोले लो, ये जगन्नाथ जी ने आपके लिए भेजा है। तो हे बच्चों, उठो उठो उठो, पत्नी को उठो उठो उठो, देखो इतना सारा प्रसाद आया है। बोले आप खा लो, बाद में आके प्लेट लेके जाऊंगा। अभी अंधेरे में पता नहीं चल रहा है कि सोने का प्लेट है, चांदी का प्लेट है, कौन प्लेट देखता है भूख लगने के बाद, कौन सा प्लेट है, पहले खाना देखते ना बाद में। तो सब बच्चे उठते, धराधर उठते और सब लोग पूरा प्रसाद पा लेते हैं। और जब प्रसाद पा लेते हैं तो थाली खाली हो जाती है, तो देखते हैं अरे लड़का किधर गया, थाली वापस देनी है। तब वो खाली थाली को देखते हैं तो पता चलता है कि ये सोने की थाली है। अभी क्या करेंगे, उसको उल्टा करते हैं, तकिया बनाते हैं और चारों ओर सब लोग सो जाते हैं। वो 3 बजे भगवान को जगाते हैं, सोने की थाली गायब, सारे पुजारी परेशान। और वहाँ का एक नियम है, मंदिर में कुछ भी होता है ना, छोटी मोटी बात कुछ भी होती है, राजा को खबर देनी पड़ती है। राजा इज कस्टोडियन, तो राजा को खबर पहुँच गई कि सोने की थाल गायब है। राजा कहता है अभी सुबह ही हो रही है, अभी अभी तो अंधेरा ही है, आपको 3 बजे ही पता चला है, तो सूरज होने के उगने के पहले ही पूरा गश्त लगा दो, पूरा नाकाबंदी कर लो, और चोर अभी इधर ही है, इसको पकड़ो। तो सारे सैनिक बाहर निकलते हैं ढूंढने के लिए, उतने में उजाला होता है। तो देखते हैं एक परिवार पूरा आराम से सोने की थाली पर उल्टा रखे सो रहा है, तकिया वकिया बना के डारा डूर सो रहा है। तो उनको बहुत चिल्ला चिल्ला के उठाते हैं, उठो यहाँ पे, ये थाली कहाँ से आई? तो बोलता है रात को एक लड़का आया था, वो बोला जगन्नाथ जी के मंदिर से आपके लिए प्रसाद भेजा है, और हमने खाना खाया, देखा बाद में लड़का मिला ही नहीं। वाह वाह वा, क्या स्टोरी बनाई आपने, वाह, आपको लगेगा हम लोग उसको विश्वास करेंगे, चोर हो तुम। तुरंत उसको अरेस्ट कर लेते हैं और तुरंत राजा को खबर करते हैं, चोर मिल गया है, शहर में ही था, बीच में ही सोया हुआ था, अच्छी तरह से थाली हमने वापस ले लिया है, सब कुछ ओके है, उसको कैद कर दिया है। अभी जेल में क्या होता है, देखो रात को आते ही भोजन खिलाया भगवान ने उनको, जेल में क्या होता है, 3 बार भोजन तो मिलता है, तो 3 बार भोजन मिल रहा है, और दिन पूरा जाता है और रात हो जाती है, तो रात को राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं, और जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आकर बहुत डांटते हैं उसको, तुम क्या समझते हो अपने आप को, मेरा भक्त इतना दूर से चला आया है, मैंने उसके लिए खाना भेजा था, वो मैं ही था जो सोने की थाल लेकर गया था उसके लिए, और तुमने मेरे भक्त को, पूरे परिवार को कैद करके उधर पत्थर तोड़ने के लिए रखा है, जाओ भागो, उसको पहले रिहा करो, उसके जाने के पहले एक महल वहां पर फिक्स करो उसके लिए, उसको महल में सेटल करो, और जीवन भर के लिए 3 बार पेट भर के मेरे 56 भोग की व्यवस्था करो उसके लिए। बोलो, राजा बीच में उठ जाता रात को, और उठ के बीच रात में भागता है जेल में, तो जेलर को उठाता है, सैनिक लोग उठाते हैं, उठाओ राजा आ रहे हैं। बोले पहले इनको रिहा करो। बोले किसको रिहा करो? बंधु मोहंती, उसके परिवार को रिहा करो। तो तुरंत रिहा करके पालकी में बिठा के, हर एक परिवार के सदस्य को पालकी में बिठा के रात रात उनको एक महल में शिफ्ट कर देते हैं, पूरे अंदर संगमरमर के फर्नीचर, नरम नरम गद्दियाँ, किचन, उसमें पूरा भंडार भरे हुए हैं, पूरा ऐसा सुंदर सुसज्जित घर में उसको रात को ही शिफ्ट करते हैं। बोले आराम से रहो यहाँ पर। और अगले दिन से वही सोने की थाल में 3 बार दिन में प्रसाद आना शुरू हो जाता है। तो फिर हर रोज बंधु मोहंती क्या करते हैं, सोने का थाल आते ही बाहर जाता है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, किसी को प्रसाद चाहिए, किसी को चाहिए, सब लोगों को बुला के पहले खिला के बचा हुआ फिर परिवार खा रहे हैं। रोज भक्त हमेशा निस्वार्थी होता है, हाँ मुझे मिल गया तो मैं सब रख लूँगा, किसी को दूंगा नहीं, दूसरों को देकर फिर बाद में खुद ग्रहण करेगा। तो आप मुझे बताइए, अभी आप अभी कहने कहानी को एक बार दोबारा सोचिए, बंधु मोहंती का बिजनेस फ्लॉप हो गया, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आपको लगे कैसे भगवान है हमारे, जो उनके एकदम प्रामाणिक भक्त है उनको ही फ्लॉप कर देते हैं, उनका ही जीवन पूरा नष्ट कर देते हैं। तस्या हम अनुग्रामी हरिष्ये तद धनम शनै शनै, श्रीमद् भागवत में, महाभारत में ये श्लोक आता है कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ, तस्या हम अनुग्रामी, अनुग्रह जिस पर करता हूँ, उसका सारी चीजें धीरे धीरे करके मैं छीन लेता हूँ, हरिष्ये तद धनम शनै ही शनै ही, धीरे धीरे उसका सब कुछ मैं छीन लेता हूँ। प्रभुपाद जी का भी बिजनेस था अच्छा, केमिस्ट का, फार्मास्यूटिकल बिजनेस था, धीरे धीरे सब बर्बाद कर दिया कृष्ण भगवान ने। और जब चोरी हो गए, फाइनली चोरी हो गए, उनका गोडाउन से फैक्ट्री में सब कुछ घड़ी भी चोरी निकाल के लेके गए, तो प्रभुपाद जी हंसे और उन्होंने ये श्लोक कहा, तस्याहम अनुगुणामी हरिष्ये तद धनम शनै शनै, भगवान मुझ पर कोई बड़ी कृपा करना चाहते हैं इसलिए सब कुछ छीन रहे हैं, मेरा परिवार छीन रहे हैं, बिजनेस छीन रहे हैं, धन छीन रहे हैं, प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, सब कुछ शून्य कर रहे हैं। क्यों छीन रहे हैं? ताकि वो भक्त सब शत प्रतिशत शरणागति प्राप्त करे। तो भूखा करके लाया और जिंदगी भर भोजन की व्यवस्था की, वो भी जगन्नाथ की महाप्रसाद की, जगन्नाथपुरी के धाम में निवास भी दिया, कोई बेचने की खरीदने की जरूरत नहीं है, खाली रहो, भजन करो, भोजन करो, प्रसाद करो, दर्शन करो, आनंद लो। तो इसलिए जब जीवन में कष्ट आता है ना, तो ज़्यादा सोचो मत क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बारे में क्यों हो रहा है, मैं तो भजन भी करता हूँ, जब भी करता हूँ, नियम भी पालन करता हूँ। वेट एंड वॉच, आगे आगे होता है क्या, तो आपको पता चलेगा, जो आगे होगा उससे आपको पता चलेगा, जो पीछे हुआ था वो कुछ भी नहीं था, जो आगे हुआ है वो इतना आनंददायी है कि बहुत कम कीमत चुकाई हमने उसकी, ऐसा है। उसके बाद में ना 8वीं सेंचुरी में जयदेव जी गोस्वामी हुए हैं, जयदेव गोस्वामी भी सखी का अवतार है वो कृष्ण के, और वो जगन्नाथपुरी और चंपाहाटी नवद्वीप धाम में दोनों जगह निवास किया उन्होंने। चंपाहाटी में रहकर उन्होंने दशावतार सूत्र, गीत गोविंद का लेखन किया है, लेकिन कुछ समय जगन्नाथपुरी में भी थे वो बाल ब्रह्मचारी के रूप में। जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए, बोले कल आपके पास एक ब्राह्मण अपनी कन्या को लेकर आएगा, ये सब ब्रह्मचर्य छोड़ दो, उसके साथ विवाह करो। वो स्वप्न में बोलते, भगवान मैं यहाँ पर ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, आपका जीवन समर्पित करने के लिए आया था, मैं कह रहा हूँ ना ब्राह्मण की कन्या से शादी करो। ब्राह्मण आके रोज जगन्नाथ जी को रो रो के प्रार्थना करता था, कोई अच्छा लड़का दे दो, मेरी लड़की को अच्छा लड़का दे दो। तो ब्राह्मण के स्वप्न में भी आए, बोले एक अच्छा ब्रह्मचर्य आया है जयदेव नाम का, उसके झोपड़ी में जाकर कल अपनी कन्या को अर्पण करो। तो वो बड़ा खुश हो गया, ये बड़ा दुखी हो गया, लेकिन क्या करेंगे, जगन्नाथ जी की आज्ञा है। ब्राह्मण आता है और पद्मावती को अर्पण कर देता है, उसका विवाह हो जाता है, गृहस्थ बन जाते हैं। फिर जगन्नाथ की इच्छा होती है जाओ नवद्वीप जाके रहो, फिर नवद्वीप में जाकर उन्होंने राधा माधव जी स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए उनके लिए, राधा माधव जी। और राधा माधव जी प्रकट होने के बाद उनका चंपक के पुलों से उन्होंने सेवा किया, चंपक वन में से, वो चंपक वन की जगह है, चंपक लता की जगह है, वो कुंज जो है वहाँ पर उन्होंने निवास किया और राधा माधव की चंपा के फूलों से सेवा की। आज भी वहाँ पर चंपाहाटी यानी चंपा का मार्केट है। तो वहाँ पर उन्होंने गीत गोविंद लिखा, और गीत गोविंद जो है ना, ये शास्त्र ऐसा है कि वो सर्वोच्च प्रेम का रहस्यमय काव्य है, वो साधारण व्यक्ति उसको पढ़ नहीं सकता है और पढ़ना भी नहीं चाहिए जब तक अधिकार प्राप्त न हो जाए, तो विषयों से मुक्ति हो जाए, जब तक भगवान के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रेम उत्पन्न हो जाए, जब पूरा निरीच निस्वार्थ और निरपेक्ष हो जाए व्यक्ति, विरक्त हो जाए, तो वो जो परमहंस स्थिति में लोग हैं वो उसको पढ़ने के योग्य हैं, जो उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं तो कभी कभी योग्य न होने पर भी अगर कोई साक्षात्कारी पुरुष समझा रहा है उसको, तो आप सुनकर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन अपने आप अध्ययन करने के लिए उसके लिए योग्यता की जरूरत है। ऐसा श्रेष्ठ शास्त्र है वो, माधुर्य रस में लिखा हुआ शास्त्र है गीत गोविंद, राधा और कृष्ण की अति उत्कट लीलाओं का वर्णन है उसके अंदर। तो वो जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी के आदेश से लिखा गया था, जगन्नाथ जी ने कहा लिखो और मुझे सुनाओ। तो वो वापस एक बार जगन्नाथपुरी आए थे, एक बार उनको राधा माधव ने दर्शन दिया और कहा कि जगन्नाथपुरी चले जाओ, तो बड़े ही भारी हृदय से वो चंपाहाटी को छोड़कर फिर जगन्नाथपुरी आए, और फिर जगन्नाथ ने उनको स्वप्न दिया कि अभी इसी में आकर मुझे रोज आप गीत गोविंद सुनाओ। तो इनका गीत गोविंद बहुत फेमस हो गया, और ये भी बहुत फेमस हो गए, करीब वो गीत गोविंदकार जो कवि है वो अभी जगन्नाथपुरी में है। तो एक दिन ये जयदेव जी कपड़ा सिलाने के लिए एक दर्जी के पास गए, बोले कपड़ा सिलाओ, तो कहते पहले हमको गीत गोविंद सुनाओ, हम उससे पैसा नहीं लेंगे लेकिन गीत गोविंद ज़रूर सुनेंगे आपसे, आप गीत गोविंद सुनाओ, ये आपकी विदागी होगी हमारे लिए, चार्ज होगा। तो वो जो है वो कपड़ा सिला रहा है माप लेकर, और ये खड़े होकर गीत गोविंद सुना रहे हैं। और कैसे है ना, अभी हम लोग भी कथा कर रहे हैं, थोड़े आंखों से अश्रु आ रहे हैं मेरे और बेहोश हो रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा है वो बोल रहा हूँ। लेकिन गीत गोविंद जी लिखा लिखने वाले कवि जयदेव गोस्वामी बड़े भाव से गा रहे हैं, जैसे कि उनकी आंखों के सामने लीला हो रही है, उसी का गायन कर रहे हैं वो भाव से। तो बीच में ना गाते गाते ये भी मग्न हो जाता है सुनने वाला, वो सिलाई कर रहा है और मग्न होकर सुन रहा है, उसके हाथ से सिलाई हो रही है लेकिन वो अपने विश्व में से खो गया अपने आप को, गीत गोविंद में मशगूल हो गया वो, और ये कहने में मग्न हो गए। और बीच में ना भाव विभोरता से जयदेव जी बेहोश होकर गिर जाते हैं, और ये व्यक्ति उनको देख नहीं रहा है, केवल सुन रहा है और कपड़े चला रहा है। लेकिन गीत गोविंद जो है वो अखंड आगे ही चलते रहता है, और गीत गोविंद समाप्त हो जाता है, वो होता ना वो इति दशम अध्याये कृष्ण अर्जुन संवादे, मतलब क्या दसवां अध्याय समाप्त हो गया, वैसे गीत गोविंद का समाप्ति का उद्घोष हो गया। तब जाकर टेलर ने ऊपर मुंह दिखा के देखा तो जयदेव जी वहां पर नहीं है, तो देखे तो जयदेव जी कहाँ गए, तो उठ के खड़ा होगा तो नीचे गिरे हुए दिखाई पड़े, और लग रहा था कि बहुत पहले से गिर गए होंगे शायद, तो उनको लगा अरे फिर इतनी देर गीत गोविंद कौन सुना रहा था। फिर उसको साक्षात्कार हुआ कि जब भी जिस समय गीत गोविंद कहने वाले जयदेव जी बेहोश होकर गिरे, उस समय जगन्नाथ जी ने जयदेव जी का रूप लिया और पूरा गीत गोविंद सुनाया। तो दो कारण है इसके, एक अपने भक्त पर प्रेम, जो प्रेम से गीत गोविंद सुना रहे हैं, उनका कार्य पूरा करने के लिए, उनका किराया देना ना कपड़े बनाने का, तो वो सेवा करने के लिए जगन्नाथ जी ने गीत गोविंद सुनाया, और दूसरा सुनाया क्योंकि जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बड़ा पसंद है, तो बोले मुझे कहने का मौका मिल रहा है चलो मैं ही कह लेता हूँ। दोनों तरफ से खुद के भी आनंद का व्यवस्था किया और भक्त के भी सेवा की उन्होंने। तो ये गीत गोविंद फिर जगन्नाथपुरी में बड़ा फेमस हो गया। तो एक दिन क्या है, एक कन्या जो है ना वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, वो बगीचा है जगन्नाथ वल्लभ बगीचा, वो बगीचा जगन्नाथ जी का बगीचा है, वहाँ पर जगन्नाथ जी विहार करने पहुँचते हैं, और रथ यात्रा में बीच में जब रथ रुकता है तो वहाँ पर जाके थोड़ा सा विश्राम भी जगन्नाथ जी करते हैं, कभी कभी करते हैं, हर साल नहीं करते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा के बीच में जाकर जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में उपवन में जाकर विश्राम किया था, और वहीं पर राजा प्रताप रुद्र ने उनके चरण दबाए थे, और क्या सुनाया था, वही गीत गोविंद सुनाया था, और फिर जगन्नाथ जी बड़े चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए थे राजा प्रताप रुद्र पर और कृपा की थी उनके ऊपर। तो एक कन्या जो है वो फूल बिन रही है जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में, और फूल बिनते समय मग्न होकर गीत गोविंद का गायन कर रही है। जगन्नाथ जी के मंदिर से ये ज़्यादा दूर नहीं है, चैतन्य मठ जो उसके पीछे ही है बिल्कुल, बहुत पास में है। तो जगन्नाथ जी को अपने मंदिर में ये सुनाई पड़ता है कि कोई बालिका बहुत मधुर और प्रेम भरी ध्वनि में गीत गोविंद का गायन कर रही है। तो जगन्नाथ जी बहुत व्याकुल हो गए सुनने के लिए, तो मुझे जाना है सुनने के लिए, लेकिन तो मंदिर खुला है, मंदिर दर्शन हो रहा है, तो मैं कैसे जाऊँ यहाँ से। तो वेट कर रहे थे कभी भोग लगेगा पर्दा बंद होगा, जैसे ही भोग लगा पर्दा बंद हो गया जगन्नाथ जी भागे वहाँ से, कोई भोजन वोजन नहीं किया, और आम रास्ता है ना वो है ग्रैंड रोड जो मेन रोड है, वहाँ जाएंगे सब देखेंगे, तो जंगल के रास्ते से गए, कांटे वाले जंगल होते हैं ना उसमें से जगन्नाथ भाग रहे जगन्नाथ वल्लभ बगीचे की ओर, और जब कांटों से भाग रहे तो बहुत सारे वस्त्र उनके फट जाते हैं, और जाके एक झाड़ के पीछे छुपकर उस बालिका के मुख से पूरा पूरा गायन सुन रहे हैं, मग्न होकर सुन रहे हैं, वो बालिका फूल बिन रही है और गा रही है, जगन्नाथ जी छुपकर सुन रहे हैं। उतने में घंटी बजती है वहाँ पर भोग निकालने वाली, पर्दा खुलने वाली, तो वापस भागते हैं, फिर उनके कपड़े और फटते हैं उसके अंदर, और पर्दा खुलने के पहले खड़े हो जाते हैं। अभी उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन पांडा लोग जब पर्दा खोलते देखते हैं सारे कपड़े फटे हुए, वो भी अकेले के, दोनों तो दोनों के वैसे ही वैसे हैं, सुभद्रा जी के और बलदेव जी के कपड़े अच्छे हैं वैसे ही, इनके कपड़े तो चिंदी हो गई पूरी, तो सब लोग परेशान हो गए। ये पर्दा बंद होने के बाद कपड़े किसने फाड़े? किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि पर्दे के अंदर जाके भोजन के समय पर जाके कपड़े फाड़े इनके? बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो गया वो। राजा तक बात पहुंची, आज किसी ने भोग लगाने के बाद भगवान के कपड़े फाड़ दिए, और पूरा हल्ला मच गया जगन्नाथपुरी में। दिस इज वेरी बिग इवेंट। रात को राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए, बोले ज्यादा चिंतित मत होना, मैं देख रहा हूँ आपको नींद नहीं आ रही है, बीच में थोड़ी ग्लानी हो गई, स्वप्न दे दिया। कहते मैं रात सुबह एक कन्या जो है वो फूल बिनते समय गीत गोविंद गा रही थी, इसलिए मैं भागा था उधर, मुझे उस लड़की के मुंह से गीत गोविंद सुनने की व्यवस्था करो। तो राजा ने सैनिकों को भेजा और अगले दिन वहाँ पर एक फील्डिंग लगाया, कौन आती है? तो लड़की वापस आई, वहाँ पर फूल बिनते हुए गीत गोविंद गा रही है। कुछ आज जाके विनती किया राजा के सैनिकों ने, आप राजा आपको बुला रहे हैं। तो बहुत वो शर्मा गई, फूल लेकर राजा के पास गई। राजा ने कहा आज से आप रोज ये समय पर आकर जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाएंगे, जगन्नाथ जी का आदेश हुआ है। छोटी सी कन्या थी वो, फिर रोज उसकी सेवा लग गई, हर रोज वो जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाती थी। तो छोटी सी लड़की जो थे वो थोड़ी बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया, फिर उसके बच्चे हो गए, फिर मध्यम वर्ग बहन हो गई, फिर वो बुढ़ी हो गई, फिर एक दिन उसका देहांत हो गया। पूरे जीवन भर उसने छोटी सी उम्र से लेकर जन्म एंड होने तक उसने जगन्नाथ जी को रोज गीत गोविंद सुनाया। वो एक जगन्नाथ के अनेक वेशों में एक होता है बड़ो श्रृंगार वेश, वो आपको देखना चाहिए, रात को 11:30 बजे होता है वो, उसमें भीड़ भीड़ कुछ होती नहीं है, उसमें चंदन लागे भी होती है कार्तिक महीने में। और रात को बड़ो श्रृंगार वेश में जब बड़ो श्रृंगार वेश करते हैं और चंदन लागी होती है, उस समय वो लड़की गाती थी राज करोच एकांत में, कोई दिन में भीड़ भाड़ में नहीं चाहिए, जीवन भर सुनाया उसने। तो उसके बाद में आज तक उसके पीढ़ी में जितने बच्चे हुए, उनके बच्चों के बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, सब लोग गीत गोविंद रात को गाते हैं, और मैंने ये सुना है रात को। हाँ, वो क्या नाम उसका, वो वस्त्र का जो रात को पहनाते हैं उनको, मेरे पास उसका एक महाप्रसादी भी है। नहीं नहीं वो बांधते ना उसको फेटा, अभी याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा आपको उसका नाम। वो कपड़ा उनको बांधते हैं जिस पर गीत गोविंद छपा हुआ रहता है, सिल्क का वस्त्र रहता है और उसके अंदर गीत गोविंद के मंत्र छपे हुए रहते हैं, वो उनको चंदन लगाने के बाद पहनाते हैं, और वो पहनाकर बड़ श्रृंगार वेश में ये गीत गोविंद सुनते हैं। गीत गोविंद खंडुआ उसको कहते हैं, गीत गोविंद खंडुआ। तो ये कथा उस कन्या की हो गई। फिर एक कर्माबाई नाम की भक्त थी, पंडरपुर में रहती थी वो, उसके गुरुजी थे पंडरपुर में, और ये बड़ी विरक्त थी, अकेली थी। तो गुरुजी का उनका एक दिन सा विचार हुआ कि हम सब लोग पुरी जाएंगे, तो पंडरपुर छोड़कर पुरी चले गए, और गए थे घूमने के लिए, लेकिन ऐसा मन हुआ उनका कि वो पुरी में रहेंगे, तो कुटिया बना ली गुरुजी ने अपनी, इन्होंने अपनी कुटिया बना ली और वहीं रहने लगे। घर में जगन्नाथ के विग्रह लाए और घर में स्थापन की छोटे से विग्रह, और रोज ये कर्माबाई ना खिचड़ी बना के जगन्नाथ को खिलाती थी। तो बहुत दिन हो गए, बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती थी और जगन्नाथ जी को भोग लगाती थी। और एक दिन राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए, बोले हमारे राज्य में एक कर्माबाई आई है, उसके घर में मैं रोज ये खिचड़ी का स्वाद लेता हूँ, बड़ी सुंदर खिचड़ी बनाती है अमृत तुल्य, और मेरी ऐसी इच्छा है कि अभी मेन मंदिर में जो है ना वो खिचड़ी का भोग लगाना आरंभ होना चाहिए। अभी जगन्नाथ के मंदिर में नियम क्या है, जो वो 2 एकड़ का लक्ष्मी देवी का किचन है ना, उसके अंदर जो बनेगा वही भोग लगाते हैं, कोई बाहर से भोजन नहीं आता है उनके। और जगन्नाथ जी का आदेश क्या राजा को, ये झोपड़ी में बना हुआ भोजन है वो मेरे मंदिर में लगा दो। तो राजा गए पुजारी के पास बताने के लिए, लेकिन उसके पहले ऐसे पता लिखा है कथा में कि राजा ने स्वप्न को इतना गंभीरता से नहीं लिया, ठीक है भूल गया। 7 दिन के बाद में क्या हुआ, आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, जगन्नाथपुरी में हर एक क्रिया जो है ना बड़ी अद्भुत है। जगन्नाथ ने कुछ चीज आपने अर्पण की और भोजन किया कि नहीं कैसे पता चलता है उनको, वो जगन्नाथ जी को भोग लगाने के बाद में अपने हाथ में पानी डालते हैं, तो एक प्रकार का आईना बनता है, और वो हाथ में जो पानी गिरा हुआ हाथ है उसमें जगन्नाथ दिखने चाहिए उनको, जगन्नाथ का दर्शन होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी लगाया हुआ भोग उन्होंने पाया है, स्वीकार किया उसका। 7 दिन के बाद सारे पुजारी बार बार पानी डाल रहे हैं, बार बार पानी डाल रहे हैं, और दिखता ही नहीं जगन्नाथ जी उनको, कितने सारे भोग लगाते दिन में, कोई भोग का नियम नहीं होता उनका। जैसे जैसे बनता है, रेडी होता है, वैसे वैसे उतने उतने व्यंजन मटके में आकर अर्पण करते हैं। टोटल दिन में 21 घंटे में 56 आइटम अर्पण करने हैं, एक साथ में 56 नहीं होते, अलग अलग आइटम अलग टाइम में बनते हैं। जब जब बनते हैं ले जाओ तो तुरंत ले जाके भोग लगता है। इतने सारे आइटम लगे, कितनी बार भोग लगा, हर बार डालते हैं पानी, दर्शन नहीं हो रहा है, ये भी गंभीर बात है। राजा को खबर पहुंचाई गई। 7 दिन के बाद में, 7 दिन तक बोलते जगन्नाथ जी ने कुछ नहीं पाया, लगता है बहुत नाराज हो गए, पता नहीं क्या हमारा से अपराध हो गया है। तो राजा के पास खबर गई तो राजा को याद आई कि मुझे जगन्नाथ ने स्वप्न में बताया था ऐसे ऐसे करना है, मैं भूल गया। वो भाग के जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए, दंडवत किया, महाराज जी माफ़ करना, अभी ढूंढता हूँ वो औरत को। कर्माबाई को ढूंढना, कर्माबाई के पास गए राजा स्वयं, क्योंकि उनको पता है ना, आपको शायद पता नहीं होगा, वहाँ के पंडा से आप मिलोगे ना तो आपको कई कहानियाँ बताएंगे कि जगन्नाथ जी कैसा पीटते हैं भक्तों को, खास करके पंडाओं को, और ख़ास करके बलदेव जी कैसे पीटते हैं। कुछ गलती किया ना शुद्धि बुद्धि में और भोग में, कुछ क्रिया में कोई गलती हो गई ना उनकी, खास करके शुचि अशुचि में, तो बलदेव जी फटका देते हैं। और मुझे वो निहारिका के पिताजी ने, राम कुमार पंडा ने बहुत सारी कथा बताई है उनको खुद को कैसे फटके बैठे जगन्नाथ जी के। तो राजा को भय था कि जगन्नाथ जी बलदेव जी दंड देंगे, तो वो सैनिकों को नहीं भेजा, खुद गए उसके घर पे और दंडवत किया। तो कर्मा भाई बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गए, राजा भी दंडवत कर रहे, बोलते भगवान का अच्छा। और एक जगन्नाथ जी ने उनको आदेश दिया था कि उसका खिचड़ी का भोग लगाने की मेन मंदिर में व्यवस्था करो, और उसके रहने की खाने की पूरे जीवन की व्यवस्था करो। तो राजा सोच रहा है कि माता जी मैं माफ़ी का चाहता हूँ, जगन्नाथ जी आपका खिचड़ी चाहते हैं, और आप चिंता मत करना, आपको मैं रहने की व्यवस्था करूँगा। बोले रहने की बात छोड़ो, पहले ये भोग पहले उनको लगा दो जाके, मेरे रहने की चिंता मत करो। तो जब भी वो खिचड़ी का घर में बाहर बनाया हुआ खिचड़ी का भोग जगन्नाथ को, जगन्नाथ के मंदिर में लगाया गया, फिर हाथ में जल डाला तो जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ, और उसके बाद में जो भोग लगाए गए उसका भी दर्शन हुआ, जगन्नाथ जी शांत हो गए, क्रोध समाप्त हो गया। फिर राजा ने उसके रहने की व्यवस्था की, और जीवन भर उसके बाहर वाले घर से हर दिन खिचड़ी का प्रसाद, खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी को पहुँचता रहा। इसीलिए आज जगन्नाथ जी के मंदिर में खिचड़ी प्रसाद का बड़ा महत्व होता है, कर्माबाई की खिचड़ी है वो। और जब फिर कर्माबाई ने जीवन भर तक उसको पहुंचाया, और उसके जाने के बाद में फिर पंडाओं ने अंदर ही वो खिचड़ी बनाना आरंभ किया, और आज भी 56 भोगों के साथ एक बार वो खिचड़ी का भोग भी लगता है, और वही खिचड़ी रोज 10,000 लोग अन्न क्षेत्र में मुफ्त में पाते हैं। ये कर्माबाई की और भी एक कथा है। एक कर्माबाई और थी, वो मुसलमान थी, तो वो अपने घर में खिचड़ी बनाकर एक बार उसको लगा जगन्नाथ को लगाना चाहिए, तो वो खिचड़ी लेकर मंदिर के पास आई और पंडाओं को विनती करने लगी, मुझे भोग लगाना है, मुझे भोग लगाना है। तो एक तो बाहर का अन्न, ऊपर से मुसलमान औरत, तो बहुत गुस्सा हो गए, वो भगा दिया उसको, चले जाओ यहाँ से, क्या समझते हो अपने आप को। तो बेचारी बहुत दुखी हो गई, वो बड़े प्रेम से लाई थी, वो बड़े प्रेम से भाव से लाई थी, बड़ी दुखी आंसू लेकर आँख में अपने घर पे चली गई। उसका घर जो था ना वो थोड़ा जगन्नाथपुरी के बॉर्डर पे था, सीमा के पास था। झोपड़ी में गई और खूब रोई, बहुत रोई। उसके पश्चात जो भोग लगा जगन्नाथ जी को और पर्दा बंद हो गया, जगन्नाथ जी भागे वहाँ से, सीधे भागे, और छोटा सा बच्चा बनकर दोनों भैया भागे और वो बुढ़िया के घर पहुँचे। बोले मैया बहुत भूख लग रही, कुछ खिला दो, वहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अपने घर से। तो वो बालकों का रूप देखकर इतना वो मोहित हो गई, सब अश्रु से बंद हो गए, इतना मोहित हो गई, तुरंत उसको प्रेम से बिठाया और जिमाया, और जगन्नाथ जी और बलदेव जी दोनों हाथ से खिचड़ी खा रहे हैं, दोनों हाथ से खा रहे हैं। क्यों? घंटी बजेगी ना, तुरंत भागना है उधर ना, ऐसा नहीं कि आराम से भी खिचड़ी पाएंगे, पर्दा खुलेंगे, भगवान गायब भी ढूंढेंगे सब लोग, उनको वो भी टेंशन है। तो दोनों हाथ से खा रहे हैं, दोनों हाथ से खा रहे, तो आपका भी खा के देखा है दोनों हाथ से? एक हाथ से खाएंगे ना बराबर मुँह में जाएगा, दोनों हाथ से खाएंगे तो मुँह का भी लगेगा सब इधर उधर, क्योंकि लेफ्ट हैंड इतना एक्सपर्ट नहीं होता ना, दोनों हाथ से खा रहे हैं तो कुछ कुछ मुंह में जा रहा है, कुछ मुंह के बाजू में लग रहा है, दोनों हाथों में लग रहा है, उतने में घंटी बजती है और दोनों बालक भाग जाते हैं तुरंत। तो कर्मा भाई बहुत शी बिकम्स वेरी सरप्राइज, अरे इतना अच्छा खा रहे थे, भाग क्यों गए बीच में? तो भाग के ऐसे खड़े हो, पर्दा खुला तो हाथ में खिचड़ी लगी हुई है, मुंह में खिचड़ी लगी हुई है, भोग में किधर भी खिचड़ी नहीं है। सब लोग को आश्चर्य लगा, खिचड़ी कहाँ से पैदा हुई? दिन भर यही चर्चा चलती रही, खिचड़ी का आइटम नहीं होते हुए जगन्नाथ जी के मुंह को, हाथ को, बलदेव जी के मुंह को, हाथ को, सब जगह खिचड़ी लगी हुई है। फिर राजा के पास खबर पहुंची, ढूंढ के निकालो किसने खिचड़ी बनाई थी। बरार पहुंचे उसके पास, बोला कोई आया था यहाँ पर खिचड़ी खाने के लिए? हाँ, एक सांवला सा बालक है, गोरा सा बालक, बड़े सुंदर थे वो, बड़े बड़ी भूख लग रही है, तो मैंने उनको भरपेट खिचड़ी खिलाया और दोनों हाथ से खा रहे थे, मुंह को खिचड़ी लगी हुई थी, हाथ को लगी हुई थी, और पता नहीं क्यों बीच में भाग गए वो। तब सब समझ में आया सब लोगों को। उसके बाद में राजा ने बड़े सम्मान से उस कर्मा भाई को बुलाया और आदेश दिया, इसका खिचड़ी रोज ठाकुर जी को लगाओ, तो फिर मेरे सपने में आके आदेश देंगे, इसको खिचड़ी लगाओ, पहले ही करो। तो बड़ा नाराज थे वो, जब भी कर्मा भाई का पहले वाले का भी खिचड़ी का प्रपोजल दिया था, पुजारी बहुत नाराज थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी का आदेश है, तो फिर बड़ा मुश्किल से मान गए, फिर वो शुरू हुआ सिलसिला। उसके आगे की कहानी जो है ना, कितने बज गए अभी? 7:30 तो हो गए। हरि बोल, राधे राधे। कोई बात नहीं, एक आध तो कथा बताते थे। तो बीच में एक राजा हुए, उसका नाम था पुरुषोत्तम जेना। पुरुषोत्तम जेना जैसे अभी कौन, दिव्य सिंह देव, 1970 से राजा है वो, अभी 53 इयर्स हो गए। जब हम जाते थे ना 87-90 में गए थे, तभी बिल्कुल काले बाल जवान थे, बहुत सुंदर, और अभी उनके सफ़ेद बाल हो गए, बहुत वृद्ध हो गए, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत तेजस्वी राजा है वो, और हमारे गुरु जी को मिले हुए हैं, इस्कॉन से बड़ा अच्छा संबंध है उनका, बड़े इस्कॉन को मानते हैं वो। तो उनके जो पूर्वज है पुरुषोत्तम जेना, वो तभी अविवाहित थे, तो उनका दक्षिण भारत में एक चेन्नई के पास को राज्य है चोल देश, वहाँ पर उनका विवाह तय हुआ कन्या के साथ। तो विवाह जब तय हुआ तो रथ यात्रा आने वाले थे। अभी देखो जगन्नाथपुरी के जीवन में जगन्नाथ के उत्सव इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी घर का वो कार्यक्रम होता है ना उनका, कोई संस्कार होते हैं, कोई विवाह होता है, तो वो कभी उत्सव में नहीं करेंगे, वो सब उसके पहले या उसके बाद में करेंगे। तो सगाई तो उसके पहले हो जाती है, स्नान यात्रा के पहले, और शादी की बात निकलती है कि कभी करना चाहिए, तो राजा कहते हैं कि देखो एक बार रथ यात्रा होने दो, उसके बाद में हम विवाह करेंगे। और कहते हैं अभी आपकी सगाई के लिए मैं आया हूँ, और सगाई के उपलक्ष्य में आपको मैं सबको चोल देश में, साउथ इंडिया में सब लोगों को, आपको मैं राजाओं को सबको आमंत्रण देता हूँ कि आप आइए और रथ यात्रा का आनंद लीजिए, अभी हमारा रिश्ता बनने वाला है तो आपके भी जीवन का हिस्सा बनेगा ये, आप आइए, ऐसा ऑफिशियल राजा आमंत्रण देते हैं। तो जब रथ यात्रा का समय आता है तो राजा कुछ काम में बिजी हो जाता है, तो अपने एक प्रधानमंत्री को भेज देते हैं, भाई हम लोग बिजी हो गए, आप हमारे इनके निमंत्रण को सम्मान देते हुए आप जाओ और हमारा प्रतिनिधित्व करो और पूरा प्रोग्राम अटेंड करो और हमको आके रिपोर्ट दे दो। तो राजा पहुंच, राजा का जो प्रधानमंत्री था साउथ इंडिया वाला, वो पहुंच गया। कब पहुंच गया? पांडी विजय के समय पहुंच गया। तो देखा रहा भगवान कैसे आ रहे हैं, उतर के आ रहे हैं, रथ में चढ़ रहे हैं, सब आनंद लिया उसने। उसके बाद देखा अरे राजकुमार हमारा जो जमाई होने वाला है वो इतने थाट से पालकी में बिठा के उसको ले आ रहे हैं, और वाह क्या बात है। फिर देखा चेहरा चेहरा कर रहा है, सब जगह सुगंधित जल डाल रहा है, पुष्प डाल रहा है, कितना सम्मान, कितना भव्य काम कर रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक था, अचानक देखा कि झाड़ू हाथ में लिया और रोड की सफाई कर रहे हैं, तो उनको बड़ा अजीब लगा, ये हमारा होने वाला जमाई ये तो भंगी है, ये कैसा राजा है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अधिकारी है, पंडा है, पुजारी है, सैनिक है, कोई झाड़ू नहीं मार रहा है, ये झाड़ू मार रहा है। तो बड़ा दुख हुआ उसको कि ये व्यक्ति ना कैसा हमारा जमाई बन सकता है, तभी क्या बोलेगा वो सबके बीच में, इतना बड़ा, इतना हजारों लोग जमा हो गए और इतना समारोह चल रहा है और लोग गौरव से देख रहे हैं, राजा झाड़ू लगा रहा है, लेकिन उसको पसंद नहीं आया बात। भोजन वोजन किया और चला गया वो, राजा को खबर किया, खबर किया, पूरा गौरवशाली बात नहीं बताई, बोलते तुम्हारा होने वाला जमाई भंगी है, कैसे हमारा ये सम्मान टूटेगा इससे, इससे विवाह कैसे करा सकते हैं हमारी कन्या का, हम अपनी कन्या को भंगी को नहीं दे सकते हैं। राजा भी बहुत कन्विंस हो गया, मैसेज भेज दिया उसने, मैरिज कैंसल, सगाई तोड़ रहे हम लोग, क्योंकि हम किसी भंगी से हमारे कन्या का विवाह नहीं कर सकते, हमारा जमाई क्षत्रिय होना चाहिए। तो पुरुषोत्तम जना को बड़ा क्रोध आया, उसको लगा ये मेरा अपमान है, ये हमारे रीति रिवाज को न समझते हुए, हमारे संस्कार को न समझते हुए इन्होंने पूरा सगाई तोड़ दिया पूरा। तो बहुत क्रोध में आया, बोला सेना को इकट्ठा किया, बोला चलो हम आक्रमण करते हैं उनके ऊपर, बदला लेंगे हमारे अपमान का। आक्रमण किया, वो हार गया, वो हार के लौट के आया। एक तो सगाई टूटने का अपमान, ऊपर से युद्ध में हारने का अपमान, बड़ा दुखी हो गया। लौट के आ रहा था वो, तो लौट के आ रहा था उसको ना अपने राज्य में जाने का भी दिल नहीं हो रहा था, भाई मैं भी बैठ जाता हूँ रास्ते में। रास्ते में बैठ गया तो एक ब्राह्मण वहाँ से आया, बोला राजा देखते हो आप क्यों बैठे हो यहाँ पर, रो रहे हो? तो थोड़ी सी कहानी बता दी उसको। तो उसने कहा आप जगन्नाथपुरी के राजा हो, उड़ीसा के राजा हो, आपने जगन्नाथ जी का परमिशन लिया था क्या युद्ध करने के पहले? अरे बोले नहीं, मैं तो क्रोध में था ना, मैं तुरंत निकल गया सैन्य लेके। अच्छा, इसलिए मैं हार के आया। तो कहते अभी जाओ, संकोच मत करो, राज्य में जाओ, जगन्नाथ से क्षमा मांगो कि तुमसे आज्ञा कृपा न लिए बिना मैं युद्ध में चला गया, तो मेरी हार निश्चित हो गई, मैं समझ गया इसका कारण क्या है, अभी मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप मेरे पक्ष में युद्ध कीजिए, क्योंकि मैं एक बार हार के आया हूँ। तो राजा की विनती भगवान ने सुनी और राजा को आदेश हुआ कि जाओ दोबारा आक्रमण करो। अभी राजा को संकोच हो रहा है कि दोबारा आक्रमण करूँगा फिर से हार जाऊँगा, तो बार बार पीछे देख रहा है कोई जगन्नाथ जी तो नहीं आ रहे, बोले कैसे जाऊँ मैं। उतने में राजा जो है ना, वो जहाँ से निकल रहा है उसके बहुत पहले दो घुड़सवार जो है ना वो जा रहे हैं, काले घोड़े पे गोरा घुड़सवार, गोरे घोड़े पे काला घुड़सवार, पूरा शस्त्र वस्त्र लेके जा रहे हैं। बहुत आगे जाकर उनको एक गांव है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो इधर एक माताजी मिलती है उनको, बुढ़िया, वो छाछ बेच रही है। तो दोनों घुड़सवार रुक जाते हैं, बोलते भैया बहुत प्यास लग रही है, ये जरा छाछ पिला दो। तो उनका रूप देखकर बड़ी मोहित हो गई, बोला ले लो पी लो, बहुत सारा छाछ पिया। और ये जाने लगे तो बोलते अरे पैसा दे दो, मूल्य दे दो, मूल्य। बोले धन तो है नहीं मेरे पास। तो वो अपना एक कड़ा निकालते हैं जगन्नाथ जी, पूरा बड़ा कड़ा, बोले धन नहीं है, ये कड़ा तो है सोने का, अलंकृत रत्नों से जड़ा हुआ है, ये आप रखो, राजा आएगा पीछे उसको ये दे दो और उससे पैसा ले लो। राजा पीछे से आ ही रहा है, हम उसके आगे आए थे। तो राजा मन में संकोच लेकर आ रहा है कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं क्या होगा, संकोच में थोड़ा सा अनिष्ठा अविश्वास के साथ चल रहा है। उतने में वो बुढ़िया उनको रोकती है, अरे राजा राजा रुक जा रुक जा रुक जाओ, क्योंकि देख के पता चला राजा है कर, और इधर आ जाओ। तो उनको बोला कुतूहल होता है, तो कुतूहल से पहुँचता है बुढ़िया के पास, बोलते ये लो ये लो, ये तुम्हारे दो घुड़सवार आए थे, उनके पास पैसा नहीं था, बहुत सास मेरा समाप्त कर दिया पूरा उन्होंने, और पैसा मांगा तो पैसा नहीं दिया, ये कड़ा दिया, ये बोला है उन्होंने आपको दे दो आप पैसा देंगे। तो जब कड़ा दिखाया ना तो समझ गए, अरे ये तो जगन्नाथ जी का कड़ा है। तो वो बुढ़िया को पैसे दिए और पूरा गांव उसके नाम पे कर दिया, आज भी वो गांव उसके नाम पे है, उस बुढ़िया के नाम से वो गांव है। और फिर जैसे ही ये राजा को श्रद्धा हुई कि भाई जगन्नाथ जी बलदेव जी आगे गए हैं, तो वो राज्य को पहुँचने के पहले ही वो सेना परास्त हो जाती है, जगन्नाथ बल्लेव उस सेना को परास्त करते हैं, इनको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो जब परास्त हुई सेना को, राजा को अरेस्ट करते हैं जिसकी बेटी के साथ विवाह हो रहा है, और बेटी को भी अरेस्ट करते हैं, और इसके मंत्री बोलते हैं तुम्हारी कन्या भंगी के साथ विवाह करने योग्य है, इसलिए हम ले जा रहे हैं उसको और भंगी के साथ ही उसका विवाह करेंगे। तो राजा को बड़ा अपमान होता है, अरे आपने कहा था ना कि हमको भंगी कहा था ना, अभी हम आपकी कन्या को जबरदस्ती लेके जाएंगे और अपने राज्य के सबसे बेस्ट भंगी के साथ विवाह करेंगे, ताकि तुम्हारी बात भी बसी जाएगी, हमारा भी बदला पूरा हो जाएगा। और फिर उसको कैद रखते हैं, कन्या को, हाँ, एक साल तक वेट करते हैं। अगली बार जब रथ यात्रा होती है तो फिर राजा पालकी में बैठ के आता है, फिर चेहरा करता है, फिर जब पहरा करने लगता है तो महामंत्री जो गए थे ना उधर, महामंत्री बोलते हैं ये सबसे बेस्ट भंगी है, इसके साथ विवाह कर लो। तो कन्या को लेके आते हैं और राजा के साथ विवाह कर देते हैं। तो वो जो कन्या थी जिसका विवाह पुरुषोत्तम जेना के साथ में हुआ, उनका पुत्र है प्रताप रुद्र राजा, जो महान राजा जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु के समय, उनकी लीला में सहभागी हुआ, बहुत सुंदर लीला किया उसने, बहुत सुंदर चरित्र है। इतना मतलब चैतन्य चरितामृत में कुछ कुछ व्यक्तिमत्व ऐसे हैं कि बहुत दिल को लुभा देते हैं, वैसे उसमें से एक राजा प्रताप रुद्र है, वेरी वंडरफुल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इतनी सुंदर लीला हुई है महाप्रभु के साथ उसकी। तो उसका जन्म जो है पुरुषोत्तम जेना और ये कन्या के विवाह के हुआ था। उसके आगे चलो कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन बता देता हूँ जरा। अच्छा, श्वेत गंगा एक बहुत सुंदर स्थान है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि जगन्नाथपुरी का दर्शन जो है वो पंच महादेव और पंच सरोवर का दर्शन किए बिना वो कभी भी पूर्ण नहीं होता। तो कम से कम नाम तो उच्चारण कर सकते हैं हम लोग। तो वो पंचतीर्थ कौन से हैं? मार्कंडेय वटे कृष्णे रौहिण्याम च महो दधौ इंद्रद्युम्ने नरास्नात्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये पांच तीर्थों में जाकर जो आचमन या स्पर्श या स्नान करता है वो पुनः जन्म प्राप्त नहीं करता है। वो कौन से है? मार्कंडेय सरोवर, श्वेत गंगा, रोहिणी कुंड, उसका तो मैंने पहले ही बताया, कौवे ने जल पिया तो वह कुंड में चला गया। चौथा है महोदधी, वो भी बताया मैंने आपको, समुद्र जगन्नाथपुरी का। और पांचवा है इंद्रद्युम्न सरोवर। ये पांच तीर्थ हो गए। और पंच महादेव कौन से हैं? जो पंच पांडवों का स्वरूप है वो पंच महादेव कौन से हैं? श्री यमेश्वर महादेव, जो युधिष्ठिर का स्वरूप है। श्री लोकनाथ महादेव, जो भीमसेन का स्वरूप है। मार्कंडेयेश्वर महादेव, जो अर्जुन का स्वरूप है। श्री कपाल मोचन महादेव, नकुल का स्वरूप है। और श्री नीलकंठेश्वर महादेव, सहदेव का स्वरूप है। इनके हर एक की अपनी अपनी लंबी लंबी कहानियाँ हैं। तो सोचा अब इन सब में से मैं आपको अभी श्वेत गंगा की कहानी सुनाता हूँ। बांग्लादेश में राजशाही जिला में पुतिना राज्य में राजा नरेश नारायण राजा था। उसकी पुत्री का नाम था शची। वो बड़ी विरक्त थी। वो अपने पिता का राज्य छोड़कर, जब पिता की मृत्यु हुई तो उसको छोड़कर वृंदावन चली गई और विरक्त हो गई, संत बन गई। वहाँ के हरिदास पंडित नाम के संत से उसने दीक्षा ली और वहाँ से राधाकुंड में निवास किया उसने परमानेंट। दोबारा बताता हूँ, शची देवी पिता की मृत्यु के बाद विरक्त हुई, वृंदावन गई, हरिदास पंडित से दीक्षा ली और राधाकुंड में अपना निवास बना लिया। उसके बाद में वो कुछ समय बाद निवास करके पुरी आ गई और पुरी में उसने क्षेत्र संन्यास लिया। वहाँ पर वो कहाँ रही? सार्वभौम भट्टाचार्य का जो जगह था ना श्वेत गंगा, वहाँ पर आश्रम है आज भी, वहाँ पर रही वो। और जब ही एक सुंदर तिथि आई कृष्ण त्रयोदशी, उस समय महावारुणी स्नान वाराणसी में जो होता है उसको कहते हैं महावारुणी स्नान, बहुत महत्व होता है उसका। तो उसका इच्छा हुई कि मैं वाराणसी जाकर गंगा में ये महावारुणी स्नान करूं, लेकिन उसको लगा गंगा जी वाराणसी बहुत दूर है और यात्रियों को भी ज्वाइन नहीं कर पाई जो जा रहे थे, और घर में भी विग्रहों की सेवा थी तो वो नहीं जा पाई। तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए, उनको कहा कि आप श्वेत गंगा को जाकर वहाँ पर स्नान करो। श्वेत गंगा बहुत सुंदर स्थान है, गंगा जी का प्राकट्य है जगन्नाथपुरी में, तो आपका सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये जगन्नाथपुरी के श्वेत गंगा में स्नान करने गई, जब स्नान किया तो अपने आप को उसने वाराणसी में पाया। यानी जब श्वेत गंगा में जगन्नाथपुरी में डुबकी लगाई और जब बाहर आई तो वो वाराणसी में थी, जैसे वाराणसी के गंगा से बाहर आ रही। और वहां पर उन्होंने देखा कि हजारों पुरी वासी जो गए थे वो सब लोग वहां स्नान कर रहे हैं, उसके बीच में ये भी स्नान कर रही है। अचानक क्या हुआ, वो पानी में खड़ी है, सब पुरी वासियों को देख रही है, स्नान कर रही है, अचानक ऐसी लहर आती है पानी की, सीधे उसको बहा ले जाती है और एकदम जगन्नाथ जी के बीच मंदिर में रात में पहुंचा देती है। यानी जल की लहर जो इतनी बड़ी आती है जैसे सुनामी जैसी, वो उसको महावाराणसी से लेकर सीधे बीच रात में, मंदिर बंद हो चुका है तो जगन्नाथ के मंदिर में छोड़ देती है। और बीच रात में जब मंदिर में पहुंचती है वो, तो जगन्नाथ का मंदिर अपने आप खुल जाता है और जगन्नाथ को दर्शन देते हैं। और ये बीच रात में बड़े जोर जोर से भाव विभोर होकर जगन्नाथ जी का स्तुति गायन कर रही है। तो बाहर जो पहरे वाले खड़े, बोलते अंदर कौन जोर जोर से गा रहे हैं, कोई चोर गया होगा। दरवाजा खोल के देखते हैं तो ये स्त्री जो है बड़े जोर से जगन्नाथ जी को गौरव कर रही है, जगन्नाथ जी भी खुले हैं, तो उनको लगा ये चोर है औरत, तो उसको पकड़ दे वो। तो फिर उनको जगन्नाथ के राजा को स्वप्न आता है कि ये मैंने सब व्यवस्था की है, इसको अरेस्ट मत करो, ये मेरी भक्त है। तो राजा सैनिक भेजता है और उनको रोक लेता है, फिर वो सम्मान से अपने घर चले जाती। अभी और एक कहानी सुनो, बहुत सुंदर कहानी है। एक जगन्नाथ जी का सेवक था, उसका नाम था तलाचू मोहपात्रा। क्या नाम था? तलाचू मोहपात्रा। उसको भी एक बार वाराणसी जाने की इच्छा हुई स्नान करने के लिए। तो वो बहुत बुढ़ा हो गया था और उसको पता नहीं था कैसे जाऊँ मैं, जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। तो जगन्नाथ से बहुत तीव्र प्रार्थना किया, जगन्नाथ जी मुझे ना उधर जाकर स्नान करने की इच्छा है। जगन्नाथ जी ने बोला आप श्वेत गंगा में जाकर स्नान करो, सब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वो श्वेत गंगा में उतरा और डिप लगाया, उसने डुबकी लगाई तो मणिकर्णिका घाट में बाहर निकला। वो किधर है? वाराणसी में। मणिकर्णिका बहुत फेमस घाट है, मणिकर्णिका घाट। वहाँ पर ही चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक शिक्षा दिया था। तो मणिकर्णिका घाट में प्रकट हो गया वो, उसने वहाँ पर गंगा जी को प्रणाम किया और वापस डुबकी लगाई, तो फिर श्वेत गंगा से बाहर निकला और चुपचाप अपने घर पर चला गया। दूसरी कहानी। तीसरी कहानी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और एक पुजारी था पुष्पलक नाम का, पुष्पलक जगन्नाथ का पुजारी था। उसको भी जाकर जगन्नाथ ने श्वेत गंगा में स्नान करने का आदेश दिया, तो ये भी वहाँ से डुबकी लगाया तो सीधा वहाँ पर बाहर निकला वाराणसी में। लेकिन इसके बारे में उतना सिंपल बातें नहीं हुई, क्योंकि हर एक कहानी अलग अलग होती है ना। तो ये जब निकला बाहर तो एक बहुत सुंदर युवा अवस्था में जो स्त्री थी वो आई वहाँ पर। वो जगन्नाथ जी की बड़ी भक्त थी, लेकिन वाराणसी में रहती थी, जगन्नाथ की भक्त थी और वाराणसी में रहकर सदैव जगन्नाथ जी को पुकारती थी कि मेरा विवाह जगन्नाथपुरी में होने दो, मेरा विवाह जगन्नाथपुरी में होने दो, मुझे जगन्नाथपुरी में निवास करना है, आपके धाम में निवास करके आपकी सेवा करना है। तो जगन्नाथ जी ने उसको स्वप्न दिया और कहा कि कल तुम वाराणसी में, मेरे वाराणसी में जो गंगा किनारा है वहाँ चले जाओ, वहाँ पर आपको पुणे का एक पांडा मिलेगा, वो आपको दिखेगा, आप पहचानोगे उसको, जब देखोगी तो उसको विवाह का प्रपोजल देना कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो वहाँ पहुँच गई, उसको मिला, बोला मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो पांडा को भी उस प्रेम आया, जगन्नाथ की प्रेरणा है, तो पांडा को बड़ा प्रेम आया, उन्होंने विवाह कर दिया और ये उधर ही बस गए, ठीक है। और गृहस्थी शुरू हो गई उनकी, पत्नी गर्भवती भी हो गई, उसको एक पुत्र भी हुआ। और ये पुत्र होने के बाद में एक दिन अचानक वो वापस वाराणसी में नदी में स्नान करने चला गया। घर में पत्नी और बालक है, अभी नवजात शिशु है, ये स्नान करने गया है। और जब स्नान करता है वाराणसी में तो बाहर निकलता है श्वेत गंगा में बाहर निकलता है। तो इज लाइक वो सपना था कि क्या था, वो इज जस्ट वंडरिंग व्हाट इज हैपनिंग। बट उसको लगा कि अरे अच्छा हो गया, जो हुआ वो अच्छा हो गया। तुरंत घर जाता है और अपना जगन्नाथ की सेवा आरंभ कर लेता है। बहुत दिनों बाद में पति लौटते नहीं है, पत्नी परेशान, तो बच्चा छोटा है भी कहाँ ढूंढने जाएगी। तो उसको पता था कि पति तो जगन्नाथपुरी का पुजारी है। तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी ट्रैवल करने योग्य हो गया, तो जगन्नाथ ने उसको प्रेरणा दी कि जाओ और अपने पति से मिलो और बताओ कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे स्वीकार करें। तो जगन्नाथ के आदेश से वो गई बालक को लेकर जगन्नाथपुरी। और उसको ढूंढ के निकाला उसने पुष्पलक को, तो पुष्पलक ने पहचानने को इनकार कर दिया। वो है ना नल दमयंती कहानी ना, वैसे याद आ रहा है मुझे। तो उसने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? ऐसा नहीं कि उसने पहचाना नहीं, लेकिन उसको जगन्नाथ की सेवा ज़्यादा प्रिय थी। क्योंकि जगन्नाथपुरी का पांडा अगर जगन्नाथपुरी के बाहर किससे विवाह करेगा तो उसका जगन्नाथ की सेवा नष्ट हो जाती है, वो वापस सेवा नहीं कर सकता, ही इज़ आउट ऑफ द सेवा। तो उसको वो सब सेवा तोड़ने की इच्छा नहीं थी, बहुत बदनामी उल्टी होगी। अरे एक ऐसा पांडा है जगन्नाथपुरी जाएगा, वो बाहर से शादी करके आया, भ्रष्ट हो गया ये भी, एक तो बदनामी भी होगी और सेवा भी चली जाएगी, तो पहचानने से इनकार कर दिया। तो फिर वो जगन्नाथ जी के मंदिर गई, रोने लगी, जगन्नाथ जी क्या हो रहा है, कुछ करो। जगन्नाथ ने उसको प्रेरणा दिया, जाओ राजा के पास जाओ, राजा को पूरी कहानी बताओ। राजा को मिलने को जाने के पहले जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया, बोला ऐसे ऐसी लड़की आएगी, वो पुष्पलक की बीवी है, मेरे प्रेरणा से उसका पुष्पलक के साथ विवाह हुआ है, और जो बालक उसके हाथ में है वो पुष्पलक का बालक है, तो आप पुष्पलक को बुलाओ और उसको स्वीकार करने को बोलो। अभी कितना धर्म संकट है, देखो आप राजा को भगवान आदेश दे रहे हैं, और राजा ने ऐसा किया तो क्या होगा, सारे पुजारी भड़केंगे उसके ऊपर कि आप राजा हो, आपका काम है मंदिर को संभालना, आप मंदिर के कस्टोडियन हो, रक्षक हो, मंदिर की रीति रिवाजों का पालन करना और रक्षा करना और बचा के रखना आपकी संस्कृति का आपका जिम्मेदारी है, और उल्टे आप ही बोल रहे हो जो भ्रष्ट हो गया, बाहर गया, शादी किया, बच्चा पैदा किया, उसको आप स्वीकार करने को बोलेंगे तो उसका कितना धर्म संकट है उसके लिए। लेकिन जगन्नाथ जी का आदेश है, क्या कर सकता है, वो भगवान का आदेश है। पुष्पलक को बुलाता है, उदय पुष्पलक ये तुम्हारी पत्नी है कि नहीं? हाँ राजा है मेरी पत्नी है, ये बालक भी तुम्हारा है, स्वीकार करो उसको। तो अरे भगवान मुझे तो ये सेवा से निकाल देंगे। तो राजा ने फिर ना वो सब बात फैल गई कि पुष्पलक ने वो पहले बात मना की थी, वो मान लिया, मान गया बाद में, अब पुष्पलक को निकाल दो। सब लोग पहुंच गए राजा के पास, पुष्पलक को निकाल दो, और राजा बोल रहे नहीं भगवान का आदेश है उसको सेवा में रखो। तो देखो क्या हुआ, तो राजा ने इसका एक नुस्खा निकाला, हाँ एक और जाति निर्माण किया, और जाति का नाम क्या रखा, सावता निगोजा। सावता का मतलब है स्टेप मदर, यानी कि वो पत्नी तो वहाँ की नहीं थी ना, बाहर की थी, एक सावत्र माँ की तरह थी वो। उसके बच्चों को सावता निगोज नाम दिया और एक एक्स्ट्रा सेवा निर्माण की इसके परिवार के जो वंशज है उनके लिए। वो क्या क्या सेवा दिया ध्यान से सुनो, श्वेत गंगा की देखभाल, चक्र तीर्थ की देखभाल, इंद्रदुम्न सरोवर की देखभाल, और श्री मंदिर जगन्नाथ जी का मंदिर जो है ना कोर्टयार्ड पटांगण बाहर का, उसकी मेंटेनेंस, ये चारे सेवा नई निर्माण की और इसके परिवार के बच्चों को उसको दे दी। तो आज भी वो सेवा उसके परिवार के सदस्य वंशज जो है वह सेवा कर रहे हैं। यह है भगवान का चमत्कार जगन्नाथपुरी का। जगन्नाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बड़ा मोह हो रहा है आपको सब बताने का, क्या करें। महोदधि समुद्र जो है उसकी महिमा ऐसी है कि एक भगवान की गोलोक में एक सखी है, इसका नाम है विरजा देवी, इसके साथ भगवान एकांत में एक कुंज में संग कर रहे थे। तो उस समय राधा रानी को पता चला कि राधा रानी को छोड़कर भगवान अकेले में विरजा नदी की विरजा सखी के साथ में एक कुंज में एकांत संग कर रहे हैं। तो ललिता विशाखा सबको लेकर राधा रानी वहाँ पहुँचती है। कृष्ण भी बड़े चतुर है, उन्होंने अपने मित्र को रखा था गेट पर, श्रीदामा को, कि किसी को आने मत देना। तो वो कहता है यहाँ पर कोई नहीं, चले जाओ यहाँ से। उसकी बहन है वो राधा रानी, लेकिन फिर भी कहता है कृष्ण का आदेश, यानी उसको आदेश मिला है ना, वो बोलता नहीं कुछ, पर चले जाओ वहाँ पर कोई नहीं है, चले जाती है। दोबारा वो खिलखिलाने की आवाज़ आती है, कृष्ण किसी से बात कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, दोबारा आती है वहाँ पर, मतलब मैं सुन रही हूँ कि कृष्ण यहाँ पर किसी से मिल रहे हो, मुझे अंदर जाने दो, मुझे नहीं जाने दूंगा। तो राधा रानी उसको शाप देती है, तो राक्षस बन जा, पृथ्वी पर जाकर राक्षस बन जा। तो सीतामा कहता है मुझे शाप दे रही हो, मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ, तुम भी अपने प्रियतम से पृथ्वी पर जन्म लेकर 100 साल तक विरह का अनुभव करोगी। उतने में ये भार का जो झगड़ा है ना सीतामा राधा रानी का, वो अंदर सुनाई पड़ता है कुंज में। तो जो विरजा नदी विरजा गोपी है ना वो भाग जाती है। फिर कुछ देर बाद में शांति हो जाती है, फिर विरजा आकर कृष्ण से मिलती है। तो विरजा के 7 पुत्र होते हैं। तो जब भी फिर एकांत होता है तो ये 7 पुत्र आकर माता को बताते, माता वो बच्चा मुझे भाई ऐसा कर रहा है, वो भाई ऐसा कर रहा है, उसका तंटा जो है ना वो जाकर माता को बताने लगी। तो माता को बहुत डिस्टर्ब होता है कृष्ण को मिलन में, तो शाप देती है कि आप लोग 7 द्वीप में जाकर 7 समुद्र बनो, 7 जगह पर, एक जगह पर भी नहीं, एक लोक पर भी नहीं, 7 अलग लोकों में 7 समुद्र बनो और दूर रहो ताकि झगड़ोगे नहीं और मुझे आके कंप्लेंट नहीं करोगे। तो उसमें से सबसे जो छोटा है वो है लवण सागर, हमारा सागर जो सॉल्टी ओशन, तो वो जगन्नाथपुरी का सागर है। फिर भगवान, फिर वो थोड़ा शांत हो गई विरजा गोपी और उसने कहा कि भगवान मैंने तो मेरे बच्चों को शाप दे दिया, वो अलग कर दिया, 7 लोकों में समुद्र के रूप में अलग अलग कर दिया उनको, बड़ा दुख हो रहा है। आप जब जगन्नाथपुर में अवतार लोगे तो कम से कम मेरे छोटे बालक पर कृपा करना। तो भगवान ने फिर वो लवण सागर में बहुत लीलाएं की, अनंत बार डुबकी लगाया, मछली बनकर जाल में आ गए, कभी बेहोश होकर गिर गए, कभी जल विहार किया, हरिदास ठाकुर का स्नान करा के समाधि भी समुद्र किनारे लगाई, शंख क्षेत्र अपना उसके बाजू में बनाया। शंख क्षेत्र की व्याख्या क्या है, जो समुद्र किनारे हैं उसको शंख क्षेत्र कहते हैं। तो ये है महोदधि। तो वो 7 प्रकार के समुद्र का वर्णन क्या है, एक है क्षीर सागर, दूसरा है दधि सागर, तीसरा है घृत सागर यानी घी सागर, चौथा है इक्षु यानी गन्ने के रस का सागर, पांचवा है सुरा यानी शराब का सागर, और छठवा है स्वादुदक यानी मीठे पानी का सागर, और 7वां है लवण सागर जो हमारा है। तो फिर लवण सागर पर भगवान ने कृपा कर दी। महोदधि का महात्म्य क्या है, सभी प्रकार की नदियाँ उस सागर में आके मिलती है जो पवित्र नदियाँ हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया है, चैतन्य महाप्रभु ने उसके किनारे पर अनंत बार कीर्तन किया है, चैतन्य महाप्रभु बेहोश अवस्था में मछुआरे के जाले में भी समुद्र में फंसे हुए थे, हरिदास ठाकुर को उस पानी में स्नान करा के समाधि दिया भगवान ने। और महोदधि क्षेत्र का ये महात्म्य है कि वज्रलेप भी पाप होता है ना, एक पाप का नाम है वज्रलेप पाप, पता है किसी को वो पाप का मतलब क्या होता है, धाम में किया हुआ पाप को वज्रलेप कहते हैं। और अगर समझना है आपको तो एक ही बात मैं आपको समझा सकता हूँ, आपने रोड बनाते हुए देखा है डांबर को, देखा है डांबर, टार टार, समझो वो टार आपके शरीर में गिर गया, समझो चमड़ी पे गिर गया, तो उसको निकाल सकते हैं आप, वो चमड़ी काट कर ही निकाल सकते हैं उसको, चमड़ी छोड़ के निकाल नहीं सकते, तो उसको कहते हैं वज्रलेप। वो लेप ऐसे होता है तो उसको निकालना मिटाना मुश्किल हो जाता है। तो धाम में रहते हुए, धाम में धाम वास करते हुए जो अपराध हम करते हैं, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, धाम वासी अपराध जो भी करते हैं उसको वज्रलेप कहते हैं। दुनिया की कोई भी दवा उस पर काम नहीं करती। तो ऐसा वज्रलेप का अपराध अगर कोई व्यक्ति महोदधि समुद्र में जगन्नाथपुरी के स्नान करता है तो वज्रलेप नष्ट हो जाता है, यह उसका महात्म्य है। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी के जमीन पर रहते हुए भी जो अपराध हम करते हैं वो भी समुद्र में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। अन्य तीर्थे कृतम पापम सिंधु तीरे विनश्यति, सिंधु तीरे कृतम पापम सिंधु स्थानात विरज विनश्यति, तीर्थराज नमस्तुभ्यम जल रूपाय विष्णवे जीवनाय जंतुनाम पर निर्वाण हेतवे, जन्म कोटि सहस्रेशु यत् पापम पूर्वम अर्जितम तदाशेषम लयम यातु देही में ब्रह्म शाश्वतम। जो अनंत जन्मों में हम पाप करते हैं और धाम में पाप करते हैं वो सब पाप इस समुद्र में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे स्कंद पुराण में लिखा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। अभी छोटी सी बात कहना ज़रूरी है कि श्रील प्रभुपाद बचपन से, जब से छोटे से बालक थे, सदैव जगन्नाथ बंगाल के स्टेशन के पास जाकर इंक्वायरी करते थे कि पुरी की ट्रेन कब निकलती है, उसका भाड़ा कितना है, उसका टाइमिंग क्या है। उनको बहुत ज़्यादा आकर्षण था। फिर बचपन में उन्होंने एक बार ज़िद किया कि मुझे रथ चाहिए, मुझे रथ यात्रा संपन्न करनी है। तो उसके पिताजी तो कपड़े वाले थे, कपड़े का बिजनेस था उनका, इतना धन नहीं था, उन्होंने इतना बजट निकाला तो बोले ये हमारे बजट में नहीं है। तो दुकान में भी गए, उधर भी इंक्वायरी किया, तो उधर कॉस्ट देख के प्रभुपाद जी के पिताजी ने उसको मना कर दिया कि नहीं कर सकते। तो वहाँ पर एक स्त्री जा रही थी, बालक प्रभुपाद जो है ना अभय, वो रो रहे थे और पिता भी दुखी थे, दोनों जा रहे थे। तो वो बूढ़ी मैया रस्ते में आई, बोले क्यों रो रहे आप? तो गौर मोहन डे जी ने कहा कि हमारा बालक जो है वो रथ चाहता है, वो रथ बनाना मेरे बस की बात नहीं है। तो बुढ़िया कहती है मेरे पास एक रथ पड़ा हुआ है, वो आप लेके जा सकते हो। तो अपने घर पे लेके गई, उनका पुराना एक रथ पड़ा हुआ था, बोले इसका डागडूजी करो, थोड़ा सा रिपेयरिंग करो और चला लो उसको। तो फिर बड़े खुश हो गए। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत खर्चा किया, उसके ऊपर पेंट वेंट किया। प्रभुपाद जी ने कहते बालक अभय ने अपने हाथ से जगन्नाथपुरी के रथ का फोटो लाकर वैसे के वैसे ही पेंटिंग किया उसके ऊपर सब रथ के लिए। और छोटी सी उम्र में पूरा रथ सजाया, पताका लगाई, सब कुछ लगाया, जगन्नाथ जी के विग्रह को बिठाया उसके अंदर। और आसपास के सभी पड़ोसियों को, स्त्रियों को, पुरुषों को प्रेरित किया, आप भोग लगाकर अर्पण करने को ले आओ, हम रथ यात्रा करेंगे। और पूरे उनके विभाग में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। तो पहले तो डिक्लेयर किया था कि बच्चों का फेस्टिवल है, तो बच्चे ही आए, लेकिन जिस प्रकार से उत्सव मनाया गया, जिस प्रकार से भोग लगाया गया, जिस प्रकार से कीर्तन किया गया, प्रभुपाद जी बालक अभय ने कीर्तन लीड किया, सब लोगों को नचाया, तो इतना गवगवा हो गया उसका, मतलब इतनी शहर में उसकी बातें हुई, सब बड़े बुजुर्ग आके गौर मोहन जी को कहते हैं अरे आपने इतना बड़ा उत्सव मनाया, हमको नहीं बुलाया। बोले अरे बच्चों का उत्सव था। अरे क्या बच्चों का उत्सव था, इतना आपने व्यंजन लगाया, इतना कीर्तन किया, इतना धूमधाम से मनाया, हम भी उस पर आना चाहते थे, हम सुन सुन का परेशान हो रहे कि हमने मिस किया उसको। इस तरह से प्रभुपाद जी ने बचपन में ही बड़े ही आनंद से अपने घर पे रथ यात्रा का उत्सव मनाया। तो हमारे को भी ये सीखना है कि बालकों को बाल्यकाल में ही संस्कार देने चाहिए, उत्सव मनाकर घर में भगवान की सेवा करते हुए उनको दिखना चाहिए। बालक अभय भी मंगल आरती की घंटी सुनकर अपने बिस्तर से उठते थे और बिस्तर से ही उल्टा होकर ऐसे हाथ रखकर पापा की पूरी मंगल आरती सुनते थे। वो ये उनके पहले संस्कार थे। इसके वो कहते थे मेरे पिताजी शुद्ध भक्त थे, माई फादर वॉज अ प्योर डिवोटी, और उन्हीं के संस्कार के कारण मैं भी भक्त बना हूँ। और उनके पिताजी सदैव संतों को, हाँ अभी ज़्यादा लंबी बात नहीं है, वो कब जन्म हुआ उनका, 1896 में हुआ, यानी 100 साल के पहले की बात, 125 साल के पहले। तब भी प्रभुपाद जी के पिताजी रोज अपने घर में भोजन करने के पहले बाहर जाकर पुकारते थे, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, तो 2-4-5 साधु आ जाते थे और उनको जिमा देते थे और भोजन के बाद दक्षिणा देते थे और कहते थे ये मेरा बालक है, इसको आशीर्वाद दो, ये राधा रानी का बड़ा अच्छा भक्त बने। इसको संस्कार कहते हैं। ये नहीं कि वरिष्ठ बने, विदेश जाके पढ़े, बहुत धनी हो जाए, ये सब टेम्पररी वरदान नहीं मांगते कोई शुद्ध भक्त। भगवान की भक्ति मांगते हैं, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने जिनको प्रियजनों के लिए सबसे भक्ति मांगते हैं, बाकी टेम्पररी वस्तुओं की इच्छा नहीं करते हैं। और यही संस्कार हम सबको अपने बालकों को देना चाहिए। घर में ऐसा वातावरण निर्माण होना चाहिए कि उस वातावरण में रह के ही बच्चा भक्त होना चाहिए, उसके अंदर के भक्ति के गुण जो है प्रकाशित होने चाहिए, प्रेरित होने चाहिए। वही हमारे बच्चों के लिए देन है। फिर आगे बच्चे क्या करेंगे अपनी मर्जी से, वो उनकी इच्छा है। हमारा कर्तव्य है कि उनको संस्कार देना, वातावरण देना और भगवान की भक्ति में उत्साह देना। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने सारे भक्ति का श्रेय अपने पिताजी को देते हैं, माताजी को देते हैं कि उनकी वजह से मैं भक्ति में आया। और जगन्नाथपुरी का मंदिर वो लास्ट मंदिर था जो अमेरिका जाने के पहले वो जगन्नाथपुरी जाके दर्शन किया उन्होंने, जगन्नाथ से कृपा मांगी। और आश्चर्य के बाद देखिए, सबसे पहला मंदिर जो बना वो भी जगन्नाथ जी का था। इस्कॉन में सबसे पहला मंदिर कहाँ बना? सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पर वो थी ना श्याम सुंदर की पत्नी का नाम क्या है, मालती माता जी। वो एक मॉल में गई थी दुकान में, उसको एक गुड़िया दिखाई दी तो उसने वो चुराई और बंद कर दी अपनी थैली में। और आकर वो कुतूहल से प्रभुपाद जी के पास आई। बड़ी अजीब गुड़िया थी वो प्रभुपाद के टेबल पर रखी। प्रभुपाद जी जमीन पर बैठे थे और टेबल पर रखी, तो प्रभुपाद जी उठे और दंडवत प्रणाम किया उस गुड़िया को। तो मालती ने पूछा, क्या आप दंडवत क्यों कर रहे हैं? बोले, ये गुड़िया नहीं है, जगन्नाथ भगवान है, इतने से थे वो। और पूछते हैं कि ये अकेले नहीं होंगे, और दो भी गुड़िया होंगी उसके हाथ में। तो वो कह रहे थे कि तीन बड़े बड़े बंडल थे, एक बंडल खोल के मैंने एक गुड़िया को देखा और मैंने उसको चुराया, इसलिए मैं भाग गई थी, लेकिन मैंने अगले दो बॉक्स खोलने तक मैं वहाँ रुकी नहीं थी। तो बोले, जाओ दोबारा और वो दो भी लेके आओ। तो वो छुप छुप के वो दुकान में गई, बोली, मालिक माफ़ करना, मैंने इसको चुराया था, लेकिन हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि और भी दो होने चाहिए। बोला, हाँ दो है, आप एक ही लेके गए। तो दो और बक्से खोल के उन्होंने सुभद्रा जी का और बलदेव जी का एक गोरी और एक सैफरन कलर की मूर्ति भी दी थी, छोटी छोटी खिलौने, और वो लेकर भाग भाग के आई वो, और फिर जगन्नाथ के वो उनके टेबल पे रखा। फिर दोबारा प्रभुपाद उठ के खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया। खाए कौन ये? बोले, तो ये कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी है, ये उनके भैया जगन्नाथ जी, ये बलदेव जी हैं, और ये उनकी बहन सुभद्रा जी हैं। तो समझ में आया कि भगवान हमें ऐसे देखो। तब प्रभुपाद जी ने क्या सोचा कि ये जगन्नाथ जी की इच्छा है कि उनको यहाँ प्रकट होना था। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे भक्तों के ग्रुप में कोई कारपेंटर है क्या, ताकि मैं 3 फुट की बड़ी मूर्ति बनाना चाहता हूँ इसी प्रपोर्शन के अंदर। तो उन्होंने कहा, मेरे पति श्याम सुंदर जी पुराने पहले कारपेंटर और मूर्तिकार हुआ करते थे। तो उनको बुलाया और ये 3 छोटे मूर्ति दिखाई, बोले, इसी प्रपोर्शन में आपको 3 फीट के प्रपोर्शनेट मूर्ति बनानी है, इसी माप से बनाना है। तो उसके लिए प्रयोगशाला बनाई गई, लकड़ी लेके आए और श्याम सुंदर जी ने उसको बनाया। लेकिन श्याम सुंदर जी उस समय सिगरेट पीते थे, तो एक बार मूर्ति का क्या चल रहा है, कैसा काम चल रहा है देखने के लिए प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे प्रयोगशाला में। तो उन्होंने सिगरेट पीकर ना जली हुई सिगरेट को जगन्नाथ जी के बॉडी पर रखा था, जो बन रही थी अभी, उस पर उसको रखा था और आगे का काम कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा उनको कि तुम्हारे और भगवान के बीच में केवल ये डंडी है जलती हुई, इसको त्याग दोगे तो निश्चित आपको बहुत जल्द भगवान मिलेंगे। तो समझ गए कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं सिगरेट छोड़ दो। तो श्याम सुंदर जी ने सिगरेट छोड़ दिया और उसी प्रयोगशाला में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह तैयार किए। और सबसे जब वो तैयार हो गए तो प्रभुपाद जी ने सबको ना बुलाया कि इस दिन हम स्थापना करेंगे उनको, वी विल इंस्टॉल जगन्नाथ जी। तो कैसे उन्होंने इंस्टॉल किया? उन्होंने ना सैकड़ों मोमबत्तियाँ मंगाई और सब लोगों को बुलाया और बोला कि ये मोमबत्तियाँ आप, मैं जब कहूँगा तो इस प्रकार से घुमाना इन 3 मूर्तियों के आसपास और फिर मैं मंत्र बोलूँगा। ऐसे करके प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को वहाँ पर प्रतिष्ठापित किया और फिर बताया कि इनके ऐसी सेवा करनी है, थोड़ा थोड़ा सिखाया उनको भक्तों को। एक दिन जब मंदिर में आए तो क्या देखा कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गायब, मंदिर में है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी परेशान हो गए, कहाँ गए भगवान? तो पता चला कि भक्त लोग उनको उठाकर गार्डन में ले गए थे खेलने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इनको ऐसा स्थापन करने के बाद आप निकाल कर मैदान में, उपवन में, बगीचे में नहीं ले सकते हैं, इनका बाहर जाने का तिथि होता है, तब हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। तब उन्हें बताया कि रथ यात्रा में वो बाहर निकलते हैं, उनका ये तिथि होता है, तो चलो फिर आप रथ यात्रा का आयोजन करो। फिर वो आने वाले आषाढ़ महीने के द्वितीया में रथ यात्रा उन्होंने अनाउंस किया और सैन फ्रांसिस्को जो वेस्ट कोस्ट में है, पैसिफिक ओशन के किनारे पे, वहाँ पर उन्होंने राजा, वो जो मेयर है ना, मेयर महापौर, उसको जाके मिले और मेन रोड बुकिंग किया और कहा कि ये मेन रोड बंद करना पड़ेगा, हम लोग रथ यात्रा करने वाले हैं। तो ट्रक में उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रखा और उस दिन पूरा सैन फ्रांसिस्को शहर जो है वो छुट्टी डिक्लेयर किया गया, मेन रोड बंद, और सारा ऑफिशियल जितने भी अधिकारी लोग हैं सब लोग रथ यात्रा में आए और ट्रक में बिठा कर वो मेन रोड पर रथ यात्रा सम्पन्न हुई। फिर प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को, इस शहर को न्यू जगन्नाथपुरी नाम दिया। और आज भी जिस दिन सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा होती है, आज भी दिन ऐतिहासिक दृष्टि से उस दिन छुट्टी रहती है, ऑफिशियल हॉलीडे, गवर्नमेंट हॉलीडे, और सारे गवर्नमेंट के जितने अधिकारी हैं वो रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। ये आज भी चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जिस रास्ते से रथ यात्रा गुजरती है और जब भगवान के नाम का गुणगान कीर्तन नृत्य करते हुए भक्त लोग रथ यात्रा के सामने चलते हैं और रथ यात्रा पास होती है, उस रास्ते पर रथ यात्रा समाप्त होने के बाद वर्ष के किसी भी दिन पर कोई चलता है, आता है, क्रॉस करता है, चलता है, तो उसको दिव्य आध्यात्मिक लाभ होता है। क्योंकि रथ यात्रा का महोत्सव वातावरण में उस जगह के लिए बहुत उच्च दर्जे की आध्यात्मिक ऊर्जा निर्माण करता है। पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी इज जनरेटेड ड्यू टू रथ यात्रा और भगवान के भक्तों का कीर्तन एवं दर्शन, रथ यात्रा का महोत्सव। और रथ यात्रा समाप्त होने के बाद भी अगर उस रास्ते से कोई गुजरता है वो दिव्य आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है। इसलिए न्यूयॉर्क में और अमेरिका के हर शहर में प्रभुपाद जी के द्वारा रथ यात्रा आयोजित होती है। अभी अभी 10 जून को न्यूयॉर्क में हुई, 55 स्ट्रीट क्रॉस करते हुए चली जाती है, वो भी मैंने अटेंड की है एक बार। तो सब जगह पर प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को प्रकट किया है। और ये भी एक कहते हैं एक वाद विवाद का भी मुद्दा खड़ा हो गया है कि प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को विदेश लेके गए और वहाँ पर चाहे जितने दिन कोई भी दिन पे वो करते हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी के थोड़े पंडा नाराज है, वो सोचते हैं कि ये जगन्नाथ जी का विदेश में जाके इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। इसके पीछे में एक रहस्य का बात यह है कि वो जो मांझाड़ पांझी है ना, वो ग्रंथ है ना जो खाली वो चीफ पुरोहित पढ़ता है, उसके अंदर लिखा है कि एक दिन विदेशी भक्त आकर जगन्नाथ जी को ले जाएंगे। वो उनको डर है कि अगर पूरे विश्व में जगन्नाथ जी के भक्त बनेंगे तो सब जगन्नाथपुरी आएंगे, और हमारे कालिया बाबा तो कैसे हैं, एक बार भक्त की नज़र मिल गई उसके होके चले जाएंगे। खास करके लिखा है रूसीय देश के भक्त आएंगे और भगवान को रूसीय देश लेके जाएंगे। यानी क्या, रशिया के भक्त जो है वो एक दिन आकर भगवान जगन्नाथ को रशिया में लेके जाएंगे, ये लिखा है शास्त्र में। वो डर है उनको, जैसे विश्ववासियों को ये पता था कि एक दिन राजा का व्यक्ति आएगा और नीलमाधव को लेके जाएगा, इसलिए वो राजा का व्यक्ति आके देख के डिस्टर्ब हो गया था, कह रही आया अभी, मतलब नीलमाधव अभी चले जाएंगे। और निश्चित रूप से नीलमाधव चले गए, गायब हो गए, राजा का जो ब्राह्मण आया तभी। तो एक ना एक दिन जरूर ही जगन्नाथ जी जाएंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी की अभी देखो जिस प्रकार से रशिया में भक्ति का प्रचार हो रहा है। एक ज़माना था इस्कॉन के अंदर जब सब जगह अमेरिकन 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 दिखाई पड़ते थे, एवरी वेयर अमेरिकन। हाँ, अभी वो थोड़ा सा प्रवाह कम हो गया है, अभी रशिया का दौर है। पूरे वृंदावन में आप देखेंगे ना, आपको क्या बताऊँ आपको, हर एक लोही बाजार के दुकान में एक ब्रजवासी लड़का होता है, सेल्स बॉय, जिसको रशियन आती है और रशिया में बात करके रशियन भाषा में बात करके अपना माल बेचते हैं। एक प्रभुपाद जी का मूर्ति रखा है, एक प्रभुपाद जी का कीर्तन 24 घंटे लगा रखते हैं और एक लड़के को रशियन लैंग्वेज सिखा के उसको सेल्स में रखा है। इतने रशियन लोग आते हैं वहाँ पर, 4 बिल्डिंग बनी हुई है इसमें पूरे रशियन लोग रहते हैं, रशियन कॉलोनी कहते हैं उसको। एक मदन मोहन जी का मंदिर बनाया है, मदन मोहन जी के मंदिर के सामने सब नदी किनारे, जमुना किनारे 7 मंजिल का मंदिर है, 7वें मंजिल पर मदन मोहन जी खड़े हैं, नया मंदिर जगन्नाथ जी का, मदन मोहन जी का। तो जिस प्रकार से रशिया में पहले आयरन कर्टन था और कम्युनिस्ट लोगों का राज्य था, अंदर घुसना बहुत मुश्किल था, प्रभुपाद जी ने उसको भेदा और डिवोटी बनाए और अभी 40 मंदिर है रशिया में, पूरे 40 टेम्पल्स आ देर। रशिया विभाजित हो गया, सब धर्म खुल गया, उसमें बाद में फिर मंदिर 40 मंदिर बन गए, यूक्रेन में मंदिर बन गए, साइबेरिया में मंदिर बन गए, इतनी होलसेल संख्या में वहाँ पर डिवोटीज बन रहे हैं। तो कभी एक दिन जगन्नाथ को मोह लेंगे और जगन्नाथ चले जाएंगे, हु नोज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।